हरे कृष्ण।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा।
आज गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस है, तो इसी उपलक्ष में हमने चैतन्य चरितामृत से ये प्यार लिया है।
गदाधर पंडितादि प्रभुर शक्ति अवतार, अंतरंग भक्त कोरी गणन जहां।
इसका अनुवाद इस प्रकार से है, गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान के शक्ति अवतार मानना चाहिए। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंग भक्त हैं। तात्पर्य, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्लोक संख्या 16 तथा 17 के संदर्भ में अपना अनुभाष्य में बतलाते हैं कि कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनसे अंतरंग भक्तों तथा शुद्ध भक्तों को जाना जाता है। सारे शुद्ध भक्त शक्ति तत्व हैं, इनमें से कुछ माधुर्य प्रेम को प्राप्त हैं तो अन्य वात्सल्य सख्य तथा दास्य प्रेम को। ये सभी भक्त हैं, किंतु जब इनकी तुलना की जाती है तो माधुर्य प्रेम में स्थित भक्त अन्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे भक्त जो नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु की सेवा करते हैं, वे वात्सल्य सख्य दास्य तथा शांत रस का संबंध रखते हैं। जब ऐसे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अतीव अनुशक्ति उत्पन्न कर लेते हैं तो वे भी माधुर्य रस के भक्तों के दायरे में आ जा सकते हैं। भक्ति का यह क्रमिक विकास श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा निम्नलिखित है। गदाधर पंडित आदि प्रभु शक्ति अवतार, अंतरंग भक्त कोरी गण जहां। गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान की शक्ति अवतार मानना चाहिए। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंग भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने यहां पर तात्पर्य बताया है कि गदाधर पंडित भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, और अन्य स्थानों में यह भी बताया गया है कि गदाधर पंडित श्रीमती राधारानी के अवतार हैं और ललिता सखी का भी अवतार बताया गया है। क्योंकि जो दूसरा दूसरी जगह में चैतन्य चरितामृत के अध्याय 10 में आदि लीला में गदाधर पंडित के बारे में ये वर्णन मिलता है,
बड़ा शाखा गदाधर पंडित गोसाई, तेहो लक्ष्मी रूपा तार सम के हनाई।
गदाधर पंडित चौथी शाखा है चैतन्य महाप्रभु का जो वृक्ष है उसकी कई शाखाएं हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लगभग 90 शाखाओं का वर्णन किया है, और ये जो शाखा है गदाधर पंडित की जो शाखा है ये कोई साधारण शाखा नहीं है, बड़ा शाखा, बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, बिग ब्रांच, बड़ा शाखा। और अंतरंगा शक्ति, भगवान कृष्ण की जो स्वरूप शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, उसके अवतार माने जाते हैं। तो इनके समान और कोई अन्य व्यक्ति नहीं है गदाधर पंडित के समान। तो गौर गणेश दीपिका में तात्पर्य बता रहे हैं, द प्लेजर पोटेंसी ऑफ श्री कृष्ण फॉर्मली नोन एज वृंदावनेश्वरी इज नाउ पर्सनिफाइड इन द फॉर्म ऑफ श्री गदाधर पंडित इन द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी इज पॉइंटेड आउट दैट इन द शेप ऑफ लक्ष्मी द प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्ण शी वॉज फॉर्मली वेरी डियर टू द लॉर्ड एज श्याम सुंदर वल्लभा। द सेम श्याम सुंदर वल्लभा वॉज प्रेजेंट इन लॉर्ड चैतन्यस पास्ट टाइम एज गदाधर पंडित। श्याम सुंदर वल्लभा मतलब राधारानी। फॉर्मली एज ललिता सखी शी वॉज ऑल्सो डिवोटेड टू श्रीमती राधारानी। दस गदाधर पंडित साइमल्टेनियसली एन इनकार्नेशन ऑफ श्रीमती राधारानी एंड ललिता सखी। इन द 12th चैप्टर ऑफ दिस पार्ट ऑफ चैतन्य चरितामृत द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसेंडेंट्स और डिसिप्लिक सक्सेशन ऑफ गदाधर पंडित। तो ये चौथी शाखा है। शाखाओं का अर्थ क्या है? वृक्ष तो महाप्रभु का ही वृक्ष है, और उसी वृक्ष की कई शाखाएं हैं, और इन सभी शाखाओं में आपको पका हुआ फल मिलता है, पका हुआ फल मिलता है, मीठा फल मिलता है। ये सारी शाखाएं प्रमाणिक शाखाएं हैं, ये सारी शाखाएं प्रमाणिक शाखाएं हैं। और जो कोई भी भक्त किसी एक शाखा का सहारा लेता है उसको महाप्रभु की अतिशय कृपा प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम जिस शाखा में हैं उस शाखा को कहते हैं रूप सनातन शाखा, रूप गोस्वामी की शाखा। तो हम उस शाखा में, उस परंपरा में, इसलिए हमको रूपानुग गौड़िया वैष्णव कहा गया है। अच्छा, रूप गोस्वामी की शाखा का लाभ क्या है कि हमें पंच तत्व की कृपा मिल जाती है। श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने हमें ये पंच तत्व दिया है, पंच तत्व मंत्र दिया है, स्थापित किया है। चैतन्य चरतामृत में है, लेकिन उन्होंने मूल रूप से उसको प्रमाणित रूप से इसको स्थापित किया है, पंच तत्व मंत्र। तो पांचों तत्वों की कृपा है हमारे ऊपर, जो हमें षड गोस्वामियों के माध्यम से मिल रही है, विशेष रूप से रूप गोस्वामी के माध्यम से मिल रही है। इसलिए हम लोगों को रूपानुग गौड़िया वैष्णव कहा गया। और जो भक्त होते हैं, जो रूपानुग गौड़िया वैष्णव होते हैं, वो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के आधार पर अपना भजन करते हैं, अपनी साधना करते हैं और फिर उसकी साध्य की प्राप्ति करते हैं। साधन साध्य इसको जानना बहुत जरूरी है। ठाकुर भक्ति, उन्होंने भजन रहस्य बताया है, एक भ्रम है, एक अनर्थ है, जिसका नाम है साधन साध्य भ्रम। साधना का पता है लेकिन साध्य का पता नहीं है, साध्य का पता है लेकिन साधना का पता नहीं है, और दोनों में ही भ्रमित है। तो इसको भक्ति ठाकुर कहते हैं अनर्थ है। कई प्रकार के अनर्थों में ये बड़ा एक विशेष अनर्थ है और अधिकांश ये प्राकृत भक्तों में पाया जाता है। प्राकृत भक्त क्या करते हैं, वो एक शाखा से दूसरी शाखा में जाते रहते हैं और फिर तीसरी शाखा में जाते हैं, फिर चौथी शाखा में जाते हैं, फिर पांचवीं शाखा में जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कि वक्रेश्वर पंडित की भी एक शाखा है जिसको पांचवीं शाखा बताया गया। वक्रेश्वर पंडित के, क्षमा करिए, वक्रेश्वर पंडित के शिष्य हुए गोपाल गुरु गोस्वामी, गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य हुए ध्यानचंद्र गोस्वामी। ध्यानचंद्र ने भी एक पद्धति दी है और वो पद्धति वो भी प्रमाणिक है। इस तरह से कई शाखाएं हैं और उनकी परंपरा है। गदाधर पंडित की भी अपनी परंपरा है, नित्यानंद प्रभु की भी अपनी परंपरा है, श्रीवास पंडित की भी अपनी परंपरा है, इन सब की अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी शाखाएं हैं। आचार्य रत्न गदाधर पंडित के शिष्य हुए, आचार्य रत्न के शिष्य हुए हरिदास पंडित, ये भी प्रमाणिक शाखा है। जैसे यहां पर वर्णन आ रहा है तात्पर्य में, गदाधर पंडित का उनके वंश के बारे में या उनके गुरु या उनके शिष्य परंपरा के बारे में 12वें अध्याय में इसकी व्याख्या की गई है। तो कविराज गोस्वामी ने हमें सभी शाखाओं के बारे में सूचना दे दी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। लेकिन जो बुद्धिमान भक्त है वो किसी एक शाखा को पकड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जिस शाखा में जो अच्छा लग रहा है उस शाखा से वो ले लिया अपनी सुविधा के लिए, इस तरह से साधना नहीं होती। साधना होती है जब हम व्यवस्यात्मिका बुद्धि होते हैं, यही भगवान गीता में कह रहे हैं, व्यवस्यात्मिका बुद्धि एक ही है कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धयो व्यवसायिनः। इसके दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ है कि व्यवस्यात्मिका बुद्धि बनो, भगवान कहते हैं मेरे मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारी शाखाओं में जाओगे, ये भौतिक जगत भी बहुत सारी शाखाओं में बटा हुआ है। जड़ में पानी ना डाला जाए, शाखाओं को तृप्त किया जाए, तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा, फूल नहीं मिलेगा, जड़ में पानी डालना पड़ेगा। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण की सेवा ना करके हम परिवार की, समाज की, देश की सेवा करते हैं, ये सबको बहुशाखा बताया गया है। ये सब बहुशाखा है, ये इंद्र तृप्ति की शाखाएं हैं, लेकिन ये शाखा वो शाखा नहीं है, ये शाखा भक्ति की शाखाएं हैं। ये जो 90 शाखाएं हैं, आखिरी शाखा जो जिसका वर्णन किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरतामृत में जो वर्णन किया है, वो है जगाई मधाई की शाखा। जगाई मधाई पहले पापी थे, लेकिन बाद में वो वैष्णव बन गए, बाद में महाप्रभु के पार्षद बन गए, तो उनकी भी शाखा प्रमाणिक है। तो ये जो शाखा है जो चैतन्य महाप्रभु से निकली है, ये अप्राकृत शाखा है। लेकिन भगवान बता रहे व्यवस्यात्मिका बुद्धि एक ही है गुरु नंदना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रूप सनातन या रूप रघुनाथ की शाखा को अपनाते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं रूप रघुनाथ की शाखा में बैठे। अगर आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत उठाएंगे, हर अध्याय के समाप्ति में कविराज गोस्वामी रूप रघुनाथ के चरण कमलों में अपना प्रणाम दे रहे हैं। रूप रघुनाथ पदे होई बे अकूति कवे हम भुजो वसे युगल प्रीति, किसने बोला? ये नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला है। तो ये हमारा पथ है, ये हमारा मार्ग है। इस मार्ग में जो रूप गोस्वामी ने जो साधन भजन दिया है उसको हम अपनाएंगे, जो शिल प्रभुपाद हमें दिया है। शिल प्रभुपाद क्या बोलते हैं लेक्चर में? वी आर रूपानुगा गौड़े वश, उद्देश्यामृत में प्रभुपाद ने दिया है। तो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को अपनाना है। एक तो साधक के लिए रूप गोस्वामी ने शिक्षा दी है, और एक उनके लिए जो वैदिक साधना से राग मार्ग की साधना में जाते हैं। तो सबके लिए रूप गोस्वामी ने शिक्षाएं दी है। और फिर किस तरह से भाव भक्ति में जाया जाए, फिर अंततः प्रेम भक्ति को प्राप्त करें। तो रूप गोस्वामी को महापुरुष ने शिक्षा दी, तो यह बहुत आवश्यक समझना, क्योंकि यहां पर गदाधर पंडित को महाप्रभु की चौथी शाखा बताया गया है। और ये बहुत शाखा, बहुत बड़ी शाखा है, बड़ी महत्वपूर्ण शाखा है। तो गदाधर पंडित के बारे में बताने से पहले हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण। जब तक हम चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण नहीं समझ लेते, गदाधर पंडित के आने का कारण भी नहीं समझ पाएंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग जो गदाधर तत्व है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद उनसे संबंधित जो लीलाएं हैं उसको भी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ये प्रसंग इतना आसान नहीं है समझने के लिए और समझाने के लिए। सबसे पहले समझाना मुश्किल है और फिर समझना भी मुश्किल है, लेकिन इच्छा ये प्रकट की जाती है कि समझाते समझाते खुद भी समझ लिया जाए, क्योंकि ये प्रोसेस है कलयुग में समझने का। कलयुग में समझने का प्रोसेस है कि समझाओ, आप सो रहे हैं। कलयुग में जो प्रोसेस है सेल्फ रियलाइजेशन का, वो है कीर्तन, संकीर्तन। संकीर्तन के माध्यम से हम सिद्धांत को समझ सकते हैं, नहीं तो गौड़ीय वैश्य सिद्धांत बहुत ही ज्यादा गुह्यतम है, वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, बड़ा समझना मुश्किल है। इसलिए जो कीर्तन के प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और निर्जन भजन में लग जाते हैं प्राकृत अवस्था में, वो वैश्य सिद्धांत, गौड़ीय वैश्य सिद्धांत को कभी नहीं समझ सकते हैं, असंभव है उनके लिए समझना। तो इसलिए कि कलयुग में कीर्तन के प्रभाव से स्मरण होता है, कीर्तन के प्रभाव से स्मरण होता है। और जी गोस्वामी भक्ति संदर्भ में लिख रहे हैं कि कीर्तन के प्रभाव से जब स्मरण की दशा में पहुंचते हैं उस अवस्था में भी कीर्तन का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो कीर्तन इज अ प्रोसेस। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पहले अध्याय में श्लोक संख्या 5 में क्या कह रहे हैं? राधा कृष्ण पढ़े विकृति, क्षमा करिए, छठे श्लोक में बोल रहे हैं, राधा या प्रणय महिमा की दृश्यो वान्येव स्वाद्य येनाद्भूत मधुरिमा की दृश्यो वा मधीया सौख्यम चास्य मद अनुभवता की दृश्यम वेति लोभात तद्भावाड या समझनी शशि गर्भ सिंधो हरिंदु। बहुत ही सुंदर श्लोक है। और ये जो श्लोक है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दिया है, ये चैतन्य महाप्रभु के आने का मुख्य कारण बताता है। भगवान अवतरित होते हैं तो उसमें मुख्य कारण भी होते हैं और गौण कारण भी होते हैं। इस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने महाप्रभु के आने का इंटरनल रीजन, अंतरंग कारण बताया है, मुख्य कारण बताया है। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं। चैतन्य महाप्रभु के कई अंतरंग पार्षद हुए और महाप्रभु के कई बहिरंग पार्षद हुए, तो गदाधर पंडित उनके क्या है? अंतरंग पार्षद है, इंटरनल एसोसिएट, शक्ति तत्व। गदाधर पंडित क्या है? शक्ति तत्व है, जीव तत्व नहीं है, विषु तत्व नहीं है, शक्ति तत्व है। तो भगवान की अंतरंग शक्ति से, उनकी शक्ति शक्ति से, शक्ति तत्व से भी कई परिकर प्रकट होते हैं जो महापुरुष की लीलाओं में सहयोग देते हैं। तो गदाधर पंडित उनमें से एक है। तो इस जो श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महापुरुष के आने का मूल कारण बता रहे हैं। तीन इच्छाएं, तीन गुह्यतम इच्छाएं जिनको कृष्ण समझना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल डिजायर्स। जब उन्होंने ब्रज में लीलाएं की द्वापर युग में तो उनकी कई इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन उनकी ये तीन इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई। और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण जो है वो गौरंग महाप्रभु के रूप में आते हैं। हर अवतार में भगवान की कोई ना कोई इच्छाएं रह जाती हैं। इसी तरह से कृष्ण की भी कुछ इच्छाएं रह गई और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, गौर कांति में प्रकट हुए और इस तरह से उन्होंने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया जिसको भक्ति नैपुण्य कहते हैं। तो ये तीन भौतिक इच्छाएं क्या क्या है, भौतिक इच्छाएं नहीं आध्यात्मिक इच्छाएं क्या क्या है, तीन आध्यात्मिक इच्छाएं कौन कौन सी हैं? गुह्यतम इच्छाएं, कॉन्फिडेंशियल डिजायर्स। कॉन्फिडेंशियल डिजायर्स का मतलब ये है, गुह्यतम इच्छाएं, राधा भाव द्युति सुविलतम नौमी कृष्ण स्वरूपम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, राधा भाव द्युति सुविलतम नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो ये तीन गुह्यतम इच्छाएं क्या है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक में बता रहे हैं। राधा या प्रणय महिमा, राधा रानी की जो प्रणय महिमा है उसको उसका आस्वादन वो करना चाहते थे, कि राधा रानी के प्रेम को, उनकी प्रेम की महिमा को श्री कृष्ण नहीं समझ पाए। राधा रानी की प्रेम की महिमा जो है कोई साधारण नहीं है, उनकी जो प्रणय महिमा है वो माधनाख्य महाभाव है। आज कई हम ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे जो स्वयं मुझे भी नहीं समझ में आता है, लेकिन कह कहकर जो है हम उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपने आप को। तो माधनाख्य महाभाव, राधारानी का ये माधनाख्य महाभाव कृष्ण भी नहीं जानते हैं। ठाकुर भक्तियों ने प्रश्न उठाया, जय धर्म में भक्तियों ठाकुर प्रश्न उठा रहे हैं कि माधनाख्य महाभाव कृष्ण नहीं समझ पाते हैं श्रीमती राधारानी का, लेकिन हम तो अभी तक ये सुन रहे थे कि कृष्ण तो अभी क्या है, वो परम स्वतंत्र है, वो परमेश्वर है और वो सर्वज्ञ है, आध्यात्मिक और भौतिक जगत के स्रोत है, जन्मादि यस्य यतः, उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आया कि वो श्रीमती राधारानी के महाभाव को नहीं समझ पा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, जबकि श्रीमती राधारानी उनकी ही अपनी ही शक्ति है, स्वरूप शक्ति है। तो भक्तों ठाकुर बड़ा अच्छा बता रहे हैं, तो दो भक्तों के बीच में ये प्रसंग है। तो वो दूसरा भक्त उत्तर दे रहा है, दूसरा भक्त उत्तर दे रहा है, वो उत्तर दे रहा है कि ये भी भगवान कृष्ण की इच्छा है, उनकी ये इच्छा है कि वो राधारानी के इस महाभाव को नहीं समझना चाहते। ये उस इच्छा के कारण क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसी इच्छा की तो क्या हुआ, तत्काल ही माधना के भाव को नहीं समझ पाए फिर कृष्ण। श्री कृष्ण ने अपने आप को योग माया से ढक लिया, जैसे माता यशोदा के समक्ष कृष्ण वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं और भूल जाते हैं कि वो भगवान है, अपने आप को एक साधारण बालक मानते हैं, साधारण एक बच्चा मानते हैं तो भूल जाते हैं। इसी तरह से माधना के भाव महाभाव को मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ऐसी वो दशा प्रस्तुत करते हैं कृष्ण। ये उनकी अपनी इच्छा है, ये उनकी अपनी इच्छा है और ये इच्छा श्री कृष्ण ने शाश्वत रूप से बनाए रखी है गौर लीला प्रकट करने से पहले। इस प्रकार वो इच्छा प्रकट करते हैं, इच्छा को समझना चाहते हैं, राधा रानी की प्रणय महिमा को समझना चाहते हैं। तो पहला क्या बताया हमने, राधा रानी की प्रणय महिमा को नहीं समझ पाए तो कृष्ण ऐसे प्रणय महिमा का आस्वादन करना चाहते थे जो वो नहीं कर पाए। दूसरा ये बता रहे हैं, कृष्ण का जो माधुर्य स्वरूप है, कृष्ण का जो माधुर्य स्वरूप है, स्वाद्य एनाद भूत मधुरिमा की दृश्यो मदिहा, यानी कि जो माधुर्य स्वरूप है कृष्ण का, जो श्रीमती राधारानी आस्वादन कर रही हैं उस माधुर्य स्वरूप का, उसका आस्वादन कृष्ण करना चाहते थे। सेल्फ सर्चिंग, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मअन्वेषण करना चाहते थे कृष्ण, अपने ही माधुर्य स्वरूप का आस्वादन करना चाहते हैं कृष्ण, जो श्रीमती राधारानी या श्रीमती राधिका कर रही हैं। तीसरा, उसका आस्वादन करते हुए जो श्रीमती राधारानी को आनंद आता है, कृष्ण ने आस्वादन करके देखा, जब उन्होंने आस्वादन किया, चलो मैं भी आस्वादन करके देखता हूं, जिस तरह से राधारानी आस्वादन कर रही हैं मेरे माधुर्य स्वरूप का, उस तरह से मैं भी आस्वादन करके देखता हूं, ऐसा विचार कृष्ण ने किया। जब ऐसा विचार किया तो उन्होंने श्रीमती राधारानी को देखा, उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि श्रीमती राधारानी तो अधिक आस्वादन कर रही है मुझसे, मैं आस्वादन कर रहा हूं अपने सौंदर्य का, लेकिन जितना आस्वादन श्रीमती राधा रानी कर रहे हैं, जितना आनंद उनको आ रहा है उतना आनंद मुझे नहीं आ रहा है, जितना आनंद राधा रानी को आ रहा है उतना आनंद मुझे नहीं आ रहा है। तो ये तीसरा कारण। हालांकि ये आपस में बड़े मिले जुले ही लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, बहुत सटल डिफरेंस है। कई बार हमारे आचार्य लोग भगवान के इन भावों को, उनके इन लीलाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं ताकि भक्त लोग इसको जो है बड़े सूक्ष्म रूप से क्रमशः समझ सके, इसलिए इस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। नहीं तो कहने का मतलब सीधा अर्थ यह है कि कृष्ण जो है श्रीमती राधारानी के प्रेम को समझना चाहते हैं, उनके प्रणय महिमा को समझना चाहते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो ये थ्री कॉन्फिडेंशियल रीजंस हैं, तीन गुह्यतम इच्छाएं जो श्री कृष्ण पूरा नहीं कर पाए ब्रज लीला में। ब्रज लीला में हुआ क्या? ब्रज लीला में ऐसा क्या हुआ? ब्रज लीला में निधि वन में, वहां पे विशाखा जी खड़ी थी और वहां पर कृष्ण पहुंचे और वहां पर श्रीमती राधारानी भी पहुंची। कृष्ण और राधारानी को देखा, पहले तो अलग अलग देखा, फिर दोनों को एक साथ देखा, पहले अलग अलग देखा फिर उनको एक साथ देखा। दो दृष्टांत। गोदावरी नदी के तट पर रामन राय ने इच्छा प्रकट की महाप्रभु के समक्ष कि आप कृपा करके मुझे ना छुपाएं अपने से, अपना वास्तविक रूप जो है मुझे प्रदर्शित करें, आपका अपना जो वास्तविक माधुर्य स्वरूप है वो मुझे प्रस्तुत करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया, राधा कृष्ण का रूप दिखाया, रामन राय को दिखाया। जब दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने रामन राय को राधा कृष्ण का रूप दिखाया तो रामन राय मूर्छित हो गए, रामन राय मूर्छित हो गए। और रामन राय कौन है? विशाखा सखी है। ब्रज लीला में जब देखा था वहां मूर्छित नहीं हुए, विशाखा सखी मूर्छित नहीं हुई, लेकिन यहां रामन राय मूर्छित हो गए। क्यों मूर्छित हो गए? इसका बड़ा अच्छा कारण बताते हैं श्रील गौर गोविंद महाराज के प्रवचन में। वो बताते हैं कि रामन राय ने क्या देखा जो विशाखा सखी ने नहीं देखा। बड़ा वो सुंदर उदाहरण देते हैं चंद्रमा और साथ में चंपक फूल का। चंद्रमा है और साथ में चंपक फूल है। चंपक फूल में चंद्रमा की किरणें बंद है, चंपक फूल बंद है, उसमें चंद्रमा की किरणें बंद है। तो विशाखा सखी ने चंपक फूल को देखा जो बंद था और चंद्रमा को देखा, ये दो चीजें देखी विशाखा सखी ने। रामन राय ने और क्या देखा? रामन राय ने चंद्रमा देखा, बंद हुआ वो चंपक फूल देखा, लेकिन उससे पहले उन्होंने और एक दृष्टांत देखा। उन्होंने क्या देखा? चंद्रमा की किरणों को चंपक फूल में प्रवेश करते हुए देखा। चंपक फूल उस समय खुला हुआ था। जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो चंपक फूल धीरे धीरे बंद होने लगता है, धीरे धीरे बंद होता है, ऐसे 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 बंद होता है। तो उस समय चंद्रमा की किरणें चंपक फूल में प्रवेश कर रही थी, यह रामन राय ने देख लिया। अब इसका अर्थ क्या है बताएं आप। चंद्रमा की किरणों को चंपक फूल में प्रवेश करते हुए देख लिया रामन राय ने, और जब प्रवेश करते हुए देखा और उसके बाद चंपक फूल जब बंद हुआ तो तत्काल ही क्या हुआ? रामन राय मूर्छित हो। यानी कि श्री कृष्ण ने मादना के महाभाव का आश्रय लिया। शहद ठंड के मौसम में जम जाता है, असली शहद जो होता है, कई शहद जमते नहीं क्योंकि उसमें गुड़ मिला होता है, केमिकल्स मिले होते हैं। वास्तविक जो शहद होता है वो जम जाता है, जमा हुआ शहद। तो कृष्ण राधारानी के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं जो उस समय उस शहद के समान है जो जमा हुआ है। लेकिन श्रीमती राधारानी का जो महाभाव है वो प्रकट होता है, माधना के महाभाव जो प्रकट होता है उस समय क्या होता है? ये तपता हुआ जो माधना के महाभाव है वो पिघलता है। वो जब पिघलने लगता है तो उस समय कृष्ण क्या करते हैं? मौका देखकर उस महाभाव में प्रवेश कर जाते हैं, पिघलते हुए महाभाव में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है श्री कृष्ण राशिमती राधारानी के महाभाव का आश्रय लेते हैं, और जैसे ही उनके भाव का आश्रय लेते हैं कृष्ण, तो उनकी कांति बदल जाती है। जैसे आपका भाव होगा वैसी आपकी कांति होगी। अगर व्यक्ति क्रोधित होता है तो उस समय उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। आम जब कच्चा होता है तो हरा होता है, आम जब पक जाता है तो पीला होता है कि नहीं? तो कांति बदल जाती है, वर्ण बदल जाता है। इस तरह से व्यक्ति जब बहुत क्रोधित होता है उसकी आंखें लाल होती हैं, आंखें लाल होती हैं। जब कोई भक्त रोता है, जब कोई भक्त रोता है उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो आंसू कैसे होते हैं जानते होता है? वो ठंडे होते हैं या गर्म होते हैं? गर्म होता है। लेकिन वैसे अगर आंसू बहते हैं तो वो गर्म नहीं होते। ये अंतर है। आध्यात्मिक अश्रु धारा जब बहती है, भौतिक अश्रु बहते हैं, उसमें अंतर ये होता है। तो कहने करते हैं जो भाव जो है हमारे हृदय में, जो भाव होता है वो चेहरे पर नजर आता है, जो फेस होता है इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। और सबसे पहले हमारी चेतना का प्रभाव सबसे पहले मन पे पड़ता है, मन पे पड़ता है। और मन का प्रभाव जो है हमारी इंद्रियों पे पड़ता है, स्थूल इंद्रियों पे पड़ता है। इसलिए मन जैसा होगा आपका वैसा चेहरा दिखाई देगा। ये जो संत लोग जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, वैष्णव होते हैं, आपका चेहरा देखकर पहचान लेते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। कहने का तात्पर्य, तो इस तरह से इस बात को बड़े ध्यान से समझना। अच्छा, आप इसमें फिर गदाधर पंडित कहां से आ गए? गदाधर पंडित की बड़ी आवश्यकता है यहां, क्योंकि भीलमंगल ठाकुर लिखते हैं, उन्होंने एक अष्टकम लिखा, भीलमंगल ठाकुर ने। उस अष्टकम का नाम है चौराष्टकम, पुरुषोत्तम मास में इसको गाया जाता है, बड़ा महत्व है इसका। चौराष्टकम, माखन की चोरी की चोरों में अग्रगण्य है, वस्त्र हरण किया चोरों में अग्रगण्य है। चोरी करना ये कृष्ण की विशेषता है ब्रज में, घर घर में जाकर माखन चोरी करते हैं। नवनीत चोरम, नवनीत चोरम। लेकिन एक बहुत बड़ी चोरी करते हैं, शीर आदि काया हृदय से चोरम। भीलमंगल ठाकुर बोल रहे हैं शीर आदि काया हृदय से चोरम, हृदय में जो भाव है श्रीमती राधारानी का, उसकी चोरी की वास्तव में कृष्ण ने। आश्रय तो बोलते हैं आश्रय लिया, लेकिन वास्तव में चोरी की, चुरा लिया। उस महाभाव को समझने के लिए उस महाभाव की चोरी कर ली, चोरी तो कर ली। बड़ा उदाहरण, सरल सा उदाहरण है, मैंने बैंक से चोरी कर ली, चोरी तो कर ली लेकिन संपत्ति तो किसी और की है ना। चोरी करने से संपत्ति आपकी नहीं हो जाती है, संपत्ति और किसी की है। आपने अपने डायरी में बहुत सारी गुह्यतम बातें लिखी है, कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट्स लिखे हैं, बड़े सारे तत्व लिखे हैं, रस तत्व, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, सारे तत्व लिखे हैं। अब तपोमय प्रभु की इच्छा होती है उन तत्वों को समझने की, जो रुक्मिणी किस्पू के पास, वो उनके कमरे में जाते हैं और उनकी वो डायरी चोरी कर लेते हैं, उस डायरी को चुरा लेते हैं। डायरी को चुराने से क्या ये समझ जाएंगे सारे तत्वों को? नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह से श्री कृष्ण जो है श्रीमती राधारानी के महाभाव को चुरा तो लेते हैं लेकिन उस भाव को ठीक से समझ नहीं पाते। इसलिए नवदीप में निमाई पंडित के रूप में घूम रहे हैं, इसलिए उनको निमाई पंडित कहा जाता है। ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाते हैं, वैश्यों का मजाक उड़ाते हैं, गदाधर पंडित मुकुंद सब परेशान है। अद्वैताचार्य जानते हैं कि ये कृष्ण है क्योंकि उन्होंने बुलाया है। गौण कारण में ये कारण ये भी आता है, अद्वैताचार्य की पुकार, नाम संकीर्तन का उद्घाटन कर रहा है, ये गौण कारण है, ये कारण ये भी अद्वैताचार्य की पुकार। तो अद्वैताचार्य जानते हैं लेकिन वो सोच रहे हैं कि ये तो क्या है, विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहा है, मैंने तो इसलिए थोड़ा बुलाया था इसको। ब्राह्मणों का मजाक उड़ाते थे, विद्वानों का बड़ा मजाक उड़ाते थे, लोग कह के थक जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि तब तक निमाई पंडित जो है गदाधर पंडित की पाठशाला में भर्ती नहीं हुए थे, स्वरूप दामोदर की पाठशाला में भर्ती नहीं हुए थे, रामन राय की पाठशाला में भर्ती नहीं हुए थे, इसलिए वो पंडित ही थे केवल। इसी कारण से श्रीमती राधारानी गदाधर पंडित के रूप में आते हैं क्योंकि वो श्रीमती राधारानी विचार करती हैं, जैसे उनकी भाव की चोरी होती है, बिल्कुल हॉलो हो जाता है अंदर, खाली हो जाता है। वो भाव की चोरी हो गई तो राधारानी सोचती है बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती हैं, उनका मान भंग हो गया। अब वो राधारानी नवदीप ट्रांसफर हो जाती हैं, ब्रज से उनका ट्रांसफर हो जाता है नवदीप में, लेकिन बिना मान के। मान भंग हो जाता है, अंदर हॉलो हो जाता है, लेकिन गदाधर पंडित के रूप में फिर भी राधारानी क्यों प्रकट होती है? क्योंकि गदाधर पंडित के रूप में जब प्रकट होती है, राधारानी ये विचार कर रही हैं, हालांकि इन्होंने मेरे भाव भाव की चोरी तो कर ली, लेकिन समझ में नहीं आएगा, मुझे ही समझाना पड़ेगा। इसी तरह से रुक्मिणी किश्पो भी विचार कर रहे हैं कि डायरी की चोरी तो कर ली, ठीक है चोरी कर ली, अब इनके अंदर दया है, इनको ये दंड नहीं देना चाहते हैं, इनको बुलाते हैं तपोमय प्रभु, आप मेरे कक्ष में आना शाम को, मुझे आपसे कुछ बड़ी गुहेतम बातें करनी। अरे क्या क्या प्रभु जी बताइए, आपने मेरी डायरी की चोरी की और पहले पेज में मैंने रस तत्व के बारे में बताया, आओ बैठो मैं समझाता हूं, क्यों परेशान होते हो, पूछ लिया होता तो वैसे ही दे देता हूं, चोरी क्यों की, मैं तुम्हें समझाता हूं रस तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, प्रयोजन तत्व क्या है, इस तरह से समझो। तो जब तपोमय नियमित रूप से इनकी पाठशाला में आएंगे तो इनको सारे जो रहस्य पता चल जाएंगे, है ना। अब ये बात अलग बात है कि तपोमय इन रहस्यों को समझने के बाद उसको कितना पछा पाते हैं, वो अलग सब्जेक्ट मैटर, वो बाद में चर्चा करेंगे उसके बारे में, उसकी चर्चा बाद में करेंगे जब हम जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे, जगन्नाथपुरी में ये रहस्य खुलेगा। हाँ। तो ये बड़ा एलैबोरेट सब्जेक्ट है, लेकिन समय कम है तो उसको शॉर्टकट में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो गदाधर पंडित के आने का कारण तो आप समझ गए। अब गदाधर पंडित अमावस्या के दिन प्रकट हुए, आविर्भाव दिवस आज जो है अमावस्या आज, और तिरुभाव भी अमावस्या के दिन हुआ, खाली। अमावस्या का मतलब न्यू मून, न्यू मून का मतलब होता है नो मून, अंग्रेजी में न्यू मून बोलते हैं तो उसका मतलब होता है न्यू नो मून, यानी कि चंद्रमा आपको आकाश में दिखाई नहीं देता है, तारे नजर आते हैं। इसी तरह से गदाधर पंडित, गदाधर पंडित आ तो गए लेकिन अंदर खाली है, हेल्पलेस है, गरीब हो गए, भिखारी हो गए, असहाय हो गए, आश्रय है। विषय कौन है? गौर, गौर विषय है और स्वयं वो आश्रय है, आश्रय विषय के पीछे भाग रहे हैं, असहाय रूप में भाग रहे हैं। अमावस्या के दिन प्रकट हो गए, गर्मी के मौसम में अर्धरात्रि में गदाधर पंडित का प्राकट्य हुआ। और बड़े और रहस्य की बात सुनिए, भक्तिराव ठाकुर भी अमावस्या के दिन उनका तिरुभाव हुआ। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़ा सुंदर बताते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वही गदाधर पंडित जो है नवदीप में भक्तिराव ठाकुर के रूप में घूम रहे हैं, और वही स्वरूप दामोदर श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के रूप में घूम रहे हैं नवदीप में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना इस प्रकार से है, I find that those two have appeared on the surface as Srila Gaur Kishoradas Babaji and Srila Bhaktivinoda Thakur. I have seen it with my own eyes of divine service, but this is not to be advertised, not to be given publicity anywhere and everywhere. People will laugh at it, but this is my heartfelt conclusion. ये मैं अपने हृदय से मेरा ये निष्कर्ष मुझे दिखाई पड़ता है कि वास्तव में स्वरूप दामोदर गोस्वामी और गदाधर पंडित वापस आ गए हैं और बाबा जी महाराज और ठाकुर भक्तिनाथ के रूप में यहां पर भ्रमण कर रहे हैं नवदीप में। ये मेरा हार्ट फेल्ट कंक्लूशन है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं। इसलिए बोलते हैं, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नाभिने गौर शक्ति स्वरूप आय रूपानुगम आए थे। रूपानुग में श्रेष्ठ श्रील भक्तिनाथ ठाकुर और गौर शक्ति, और गदाधर पंडित कौन है? गौर शक्ति। तो भक्तिनाथ ठाकुर को क्या संबोधित किया जा रहा है? गौर शक्ति। तो गदाधर पंडित का आवेश भक्तिनाथ ठाकुर में। हाँ, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने विशेष रूप से बड़े विस्तार से रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को प्रस्तुत किया है। तो कहां पे थे हम लोग? हाँ, अमावस्या। अच्छा आप देखिए, और बड़े विशेष बात, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का समय, उसमें अष्टमी आता है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का समय है, उसमें अष्टमी आता है। राधारानी का प्रकट हुई, कृष्ण का प्रकट हुए, दोनों को मिला दो, पूर्णिमा का चांद, वो है गौरंग महाप्रभु। गौरंग महाप्रभु प्रकट हुए पूर्णिमा के दिन। क्यों पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए महाप्रभु? क्योंकि गदाधर पंडित के भाव को सब ले लिया, राधारानी के भाव को चुरा लिया, तो वो तो पूर्णिमा के रूप में प्रकट हो गए, बड़े अच्छी तरह से चमक रहे हैं नवद्वीप में। चंद्रोदय, मायापुर चंद्रोदय बोलते हैं जैसे हम, महाप्रभु का एक नाम क्या है, मायापुर चंद्रोदय। पूर्णिमा के समक्ष समान प्रकट हुए गौर। कैसे प्रकट हुए? राधारानी का भाव चुरा लिया, इसलिए राधारानी का भाव चुरा लिया तो वो अमावस्या के दिन प्रकट हो रहे हैं। उनका भाव चुरा लिया क्योंकि, तो गदाधर पंडित अमावस्या के दिन प्रकट हो रहे हैं, और क्योंकि भाव चुरा लिया उन्होंने तो स्वयं पूर्णिमा के दिन प्रकट हो रहे हैं, और राधारानी जो है अष्टमी के दिन प्रकट हो रही है, कृष्ण अष्टमी के दिन प्रकट हो रहे हैं, दोनों को मिला दो फिर महाप्रभु के रूप में प्रकट हो रहे हैं। बड़ी अद्भुत बात। तो ये इसमें कुछ रहस्य है, उनके प्राकट्य का रहस्य। इसलिए वैश्यों का आना या भगवान का आना या उनके परिकरों का आना, ये आना कोई साधारण आना नहीं होता। उनका और आना और जाना जो है उसके पीछे भी रहस्य होता है, उसके पीछे भी विशेषता होती है, तो इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार गदाधर पंडित जो है हमेशा गोरख महाप्रभु के साथ खड़े रहते हैं, पीछे पीछे रहते हैं। जब हम उनकी लीलाओं का वर्णन सुनेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से गदाधर पंडित महाप्रभु को छोड़ते ही नहीं है और सदैव उनके पीछे लगे रहते हैं, साय के समान, छाय के समान। तो गदाधर पंडित ने कई बार प्रयास किया वृंदावन जाने का, लेकिन महाप्रभु ने गदाधर पंडित को वृंदावन नहीं जाने दिया, जगदानंद पंडित को जाने दिया, और वो भी एक कंडीशन में कि वहां जाकर रूप सनातन का आश्रय लेंगे, गिरिराजी में नहीं चढ़ेंगे और ब्रजवासियों से जान पहचान नहीं बनाएंगे, है ना। लेकिन गदाधर पंडित को तो जाने नहीं दिया, क्योंकि गदाधर पंडित का रोल तो अभी नवदीप में है और महाप्रभु के साथ उनको रहना है, उनके पीछे पीछे चलना है। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समझिए, हमें क्या बताया, गदाधर पंडित क्या है, आश्रय है, गौर क्या है, विषय है। गदाधर पंडित जब गौरंग महाप्रभु के समक्ष खड़े होते हैं तो अपने को बिल्कुल खाली समझते हैं, भाव की चोरी हो गई। तो गौरंग महाप्रभु के समक्ष होते हुए भी उनसे मिलन हो रहा है, मिलन के समय भी उनको विरह होता है, विरह की अनुभूति होती है जब मिलन के समय, उसको कहते हैं प्रेम वैचित्य, टेक्निकली उसको कहा जाता है प्रेम वैचित्य। जैसे राधारानी जब कृष्ण से मिली थी कुरुक्षेत्र में, ब्रजवासी मिले थे, राधारानी ने कृष्ण को देखा, उनको कहा कि मैं वही राधा हूं और आप वही कृष्ण हैं, क्या कारण है मुझे यहां पर वृंदावन का स्मरण हो रहा है, यमुना जी का स्मरण हो रहा है, ये राजवेश क्या है, मोर मुकुट कहां है आपका? तो राधारानी अपने भाव को वहां व्यक्त नहीं कर पा रही थी, ब्रज भाव को व्यक्त नहीं कर पा रही थी द्वारकाधीश के समक्ष, और भावों को विरह हो रहा था, सेपरेशन फील हो रहा था, इंटेंस सेपरेशन फील हो रहा है कृष्ण के सामने। बड़ी अजीब सी बात, आपके सामने व्यक्ति खड़ा है फिर भी आपको सेपरेशन फील हो रहा है, कहीं ये व्यक्ति चला ना जाए, कहीं व्यक्ति छूट ना जाए, है ना। मैं अपने भावों को व्यक्त क्यों नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, सामने खड़ा है व्यक्ति, इसको कहते हैं प्रेम वैचित्य कहते हैं। इसलिए विप्रलंब भाव को इतना ऊंचा इसलिए बताया जाता है, इस कारण से बताया जाता है क्योंकि इस मिलन में विरह की अनुभूति होती है, मिलन में विरह की अनुभूति होती है। और विप्रलंब भाव को इसलिए ऊंचा बताया जाता है कि विप्रलंब भाव में विरह में मिलन की अनुभूति होती है, समझ गए। इसलिए जगन्नाथपुरी में जब सेपरेशन फील कर रहे हैं महाप्रभु, तो उस समय उनको कृष्ण से मिलन की अनुभूति हो रही है, इसलिए बार बार वहां बोलते हैं कृष्ण कोथा है, कृष्ण कोथा है बोलते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण अभी उनको छूने वाले हैं, अभी वो कृष्ण को छूने वाले हैं, अभी कृष्ण को उन्होंने देखा जगन्नाथ वल्लभ के बगीचे में, ये कृष्ण अभी बैठे थे शाखा के ऊपर। तो विरह में उस विप्रलम्ब भाव में मिलन की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार प्रेम वैचित्य होता है, इसको टेक्निकली प्रेम वैचित्य कहा जाता है। तो एक उदाहरण और भी दे रहे हैं कि एक दफे श्रीमती राधारानी जो है कृष्ण के सामने बैठी थी और कृष्ण को जब देखा, कृष्ण का शरीर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ना, जो भी कृष्ण को देखेगा कृष्ण के शरीर में अपनी परछाई देखेगा, वो ट्रांसपेरेंट। तो राधारानी को क्या लगा कि ये दूसरी सखी कहां से आ गई। देखिए उनका उनका प्रेम देखिए, उनका राधारानी का प्रेम देखिए कृष्ण के प्रति, ये दूसरी सखी कहां से आ गई है, कौन है ये सखी। तो राधारानी जो द्वेष प्रकट कर रहे हैं, ये कहां से आ गई सखी। तो ललिता जी आगे बोलती हैं, चिंता मत करो, ये सखी कोई नहीं है, आप ही की परछाई नजर आ रही है कृष्ण में। तो इसको कहते हैं प्रेम वैचित्र्य। ये क्यों हो रहा है, मिलन के समय विरह का डर। सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में समझने का तरीका यह है कि विरह में, सॉरी मिलन में विरह का डर है, कहीं बिछड़ ना जाए कृष्ण, कहीं चले ना जाए कृष्ण। तो इसी तरह से यही भाव रहता है गदाधर का जब वो महाप्रभु के साथ खड़े होते हैं। ये है गौर गदाधर। गौर गदाधर ये राधा कृष्ण है, माधुर्य स्वरूप। हम लोगों को प्रभुपाद जी ने गौरताई की सेवा करने के लिए कहा है कि गौरताई की सेवा करके हम लोग गौर गदाधर की कृपा प्राप्त करते हैं। ये इसमें रहस्य है। नित्यानंद प्रभु की सेवा करते करते, नित्यानंद प्रभु की जब सेवा करते हैं धीरे धीरे, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग भक्तों से अलग अलग संबंध महाप्रभु का। सबसे जो गुह्यतम संबंध है महाप्रभु का वो है गदाधर के साथ, गदाधर पंडित के साथ। गदाधर पंडित के बाद उनका संबंध है रूप गोस्वामी के साथ, सनातन गोस्वामी के साथ माधुरी लीला का संबंध है, और नित्यानंद प्रभु के साथ उसके बाद, और शची माता के साथ वात्सल्य का संबंध है, वात्सल्य का संबंध है। अद्वैत प्रभु और श्रीवास पंडित के साथ अलग संबंध है, अलग ही संबंध उनके साथ, यानी कि ऐश्वर्य आदर मर्यादा का संबंध है अद्वैताचार्य के साथ, श्रीवास पंडित के साथ। तो उसमें कुछ अंतरंग पार्षद होते हैं, कोई बहिरंग पार्षद होते हैं। ये पंच तत्व जो है हमें अलग अलग उपलब्धि कराते हैं, इनका आश्रय लेते हैं। पंच तत्व की कृपा देखिए, हमारे गुरु परंपरा के जो आचार्य हैं इतने बुद्धिमान हैं कि उन्होंने पांचों तत्वों को हमें समक्ष, हमारे समक्ष प्रकट कर दिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि। तो शिवास पंच तत्व, शिवास पंडित जो है वो शुद्ध नाम के आश्रय हैं, शुद्ध नाम उनकी कृपा से हम शुद्ध नाम का उच्चारण कर पाते हैं, शिवास पंडित की कृपा से। गदाधर पंडित भाव आश्रय हैं, गदाधर पंडित भाव आश्रय हैं। नित्यानंद प्रभु प्रेम प्रदान करने वाले हैं इसलिए प्रेम आश्रय हैं, और उनकी कृपा से जब प्रेम का आश्रय मिल जाता है तो गौर कृपा होती है। तो गौरंग महाप्रभु कौन है, वो रस आश्रय है, रस आश्रय। तो ये पांच तत्व हैं। अब पांचों तत्वों की कृपा गुरु परंपरा के माध्यम से पंच तत्व की कृपा हमें मिल रही है एक ही समय एक ही स्थान में। जैसे श्रीधाम मायापुर में पंच तत्व की स्थापना प्रभुपाद ने वहां पर करने के लिए की थी, और श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने भी पंच तत्व की स्थापना की योगपीठ में। तो क्या स्थापित करने के लिए, इन पंच तत्व के द्वारा हमें सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त होगी, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त। तो इस प्रकार ये आश्रय और विषय के बारे में। गदाधर पंडित को कई बार चेतन चरतामृत में रुक्मिणी भी बताया गया है। रुक्मिणी इसलिए बताया गया है, जगन्नाथपुरी में जब रुक्मिणी जी के रूप में उनको वर्णन किया गया उनका, वो इसलिए किया गया है कि रुक्मिणी के जो भाव है द्वारका में, वो उसमें वो मान प्रकट नहीं करती हैं, उसको कहते हैं दक्षिण भाव। एक होता है वाम भाव और एक होता है दक्षिण भाव। तो दक्षिण भाव का मतलब होता है समय से मूल, समय से मूल है। कृष्ण कई बार अगर उनको आप प्रयास करते हैं रुक्मिणी जी का, तो रुक्मिणी जी घबरा जाती है, मूर्छित हो जाती है, है ना, क्या तुमने ग्वाले से विवाह कर लिया, है ना, किसी क्षत्रिय से विवाह करना चाहिए था, किसी बहुत बड़े राजा से विवाह होता, ये क्या ग्वाले से विवाह कर लिया, मैं तो ऐसे गाय चराने वाला हूं। इस प्रकार की जब बातें करते हैं तो रुक्मिणी जी मूर्छित हो जाती, लेकिन राधा रानी जो है वो मान प्रकट करती है, कृष्ण को बाहर खड़ा करती है, कृष्ण हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, ललिता जी विशाखा जी घर अंदर नहीं छोड़ते उनको, और इस मान को तोड़ने के लिए पता नहीं कृष्ण को क्या क्या करना पड़ता है, अपनी बांसुरी देनी पड़ती है, अपनी मोर मुकुट देना पड़ता है, अपना सर्वस्व देना पड़ता है, यहां तक कि राधा रानी के चरणों को लेकर अपने मस्तक पर धारण करना पड़ता है। देही पद पल्लवम उदारम, है ना, जयदेव गोस्वामी यही बोल रहे हैं, जयदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, देही पद पल्लव उदारम, के जो पाद पल्लव है बड़े ही उदार है। स्वर गरल खंडनम मम शीर्षी मंडनम, स्वर गरल का खंडन कर दिया राधानी के चरणों ने, मेरे स्वर गरल का खंडन कर दिया, और उनके चरण जो है मेरे मस्तक को सुशोभित कर रहे हैं, उनके चरण कमल मेरे मस्तक को सुशोभित कर रहे हैं, क्योंकि राधानी के जो चरण कमल है बड़े ही उदार है, बड़ी दया है उसमें, बड़ी करुणा है। जो कामाग्नि जल रही थी स्वर गरल जिसको कहते हैं, उसका खंडन कर दिया आपके चरण कमलों ने, तो चरणों को लेकर श्री कृष्ण श्रीमती राधारानी के चरणों को लेकर अपने मस्तक में धारण करने के लिए तैयार है। तो इसलिए हम उन कृष्ण की सेवा करते हैं जो राधारानी को प्रिय है, जो राधारानी को प्रिय है, क्योंकि राधारानी को प्रिय है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की हम लोग पूजा करते हैं, राधा दास सिंह का आरती है। तो इस प्रकार इन बातों को बड़े सावधानी से समझना है, बड़ी सावधानी से सुनने का प्रयास करना। तो ये था कुछ गदाधर पंडित के बारे में, और भक्तिनाथ ठाकुर ने कई स्थानों में गौर गदाधर वगैरह की पूजा स्थापित की, जैसे गोद्रुम द्वीप आप देखते हैं वहाँ गौर गदाधर की सेवा है, गदाधर पंडित के जो भाई थे द्विजवाणीनाथ वो भी गौर गदाधर की सेवा कर रहे थे, बाद में शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने गौर गदाधर उसी वगैरह की स्थापना की, चांपाटी में गौर गदाधर की सेवा आज भी चल रही है, और इसके अलावा ढाका में भी, ढाका में जो उन्होंने मठ स्थापित किया बलियाटी ढाका उस स्थान का नाम है, जहां पर शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने गौर गदाधर की सेवा स्थापित की, और साथ में योगपीठ में जो नरसिंह मंदिर है उसके साथ में भी गौर गदाधर की सेवा चल रही है, गौर गदाधर की सेवा चल रही है। तो गौर गदाधर का जो कंसेप्शन है बड़ा ही उच्च कोटि का कंसेप्शन है, कोई इतना सरल नहीं है इन बातों को समझना, जितनी सरलता से ऐसा लग रहा है कि हाँ हम समझ गए, बट ये जो समझना है हमारा एक केवल थ्योरेटिकल प्लेटफॉर्म में है, मेंटल प्लेटफॉर्म में, हमें इस मन को इस बुद्धि को कुछ ना कुछ भोजन देने की आवश्यकता पड़ती है। मेंटल फूड अलग होता है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अलग होता है। मेंटल फूड आपको पढ़ने से मिल जाएगा, लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा वैष्णव की सेवा करने से, गुरु की सेवा करने से। महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तेश तमो द्वारम जोशिताम संगी संगम। किसने बोला ये? भगवान ऋषभदेव ने बोला, महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तेश। विमुक्ते का मतलब होता है विशेष मुक्ति, साधारण मुक्ति नहीं। साधारण मुक्ति का मतलब है कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए, विशेष मुक्ति, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति ही, अपने स्वरूप में स्थित होना, यानी कि राधा गोविंद का प्रेम प्राप्त करना, राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, उनके चरणों की सेवा प्राप्त करना, यह है विमुक्ति। वैष्णव की सेवा करने से यह प्राप्त होता है, गुरु की सेवा करने से यह प्राप्त होता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सन्मा। केवल भक्ति का मतलब है उसमें सारी अभिलाषाएं शून्य है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, वो है केवल भक्ति। और गुरु के जो चरण कमल है उसमें रस ही रस भरा है, वो रस का भंडार है। तो चरण कमलों का रसास्वादन जो भक्त करना चाहता है उसको गुरुमुखा पद्मा वाक्य चित्ते ते कोरिया किया, गुरु की वाणी को, गुरु के आदेश को चित्त में धारण करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा इच्छाओं को गुरु के साथ, तो क्या होगा, ये प्रसादे पूरे सर्वाशा, सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। लेकिन सारी आशाओं को पूरा करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने यह भी बताया है, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, उनके चरणों में रति जागृत करनी पड़ेगी, या गुरु की सेवा करने से रति जागृत होती है, भाव जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है, इसका अर्थ यह भी है। तो इस प्रकार गुरु जो है वो श्री जी के प्रतिनिधि है, इसलिए श्री शब्द का उपयोग किया नरोत्तम दास ठाकुर ने। तो गदाधर पंडित, गौर गदाधर की जो सेवा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। कहने का अर्थ है कि गदाधर पंडित असहाय अवस्था में है, हेल्पलेस सिचुएशन में है, जिस तरह से कुरुक्षेत्र में श्रीमती राधारानी हेल्पलेस सिचुएशन में है और वहां पर गोपियां जो है उनको पैसिफाई कर रही हैं, उनको सांत्वना दे रही हैं, इसलिए ठाकुर भक्तिराज कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं कुरुक्षेत्र, वहां जाकर मैं भजन कुटीर बनाऊंगा। शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने विचार किया, अरे भजन कुटीर और कुरुक्षेत्र में, इनको तो वृंदावन जाना चाहिए, सीधा मायापुर जाना चाहिए, वहां क्या करेंगे। तो भक्तिराज ठाकुर ने उत्तर दिया, इन्होंने विचार किया, भक्त ठाकुर के भाव को समझा, जहां पे सेवा की आवश्यकता है वहां जाना चाहिए, तो उस सेवा का बड़ा महत्व होता है, इसको कहते हैं सर्विस नेसेसिटी। आग लग गई तो घर में बैठेंगे क्या, दुकान में आपका अपना बिजनेस चल रहा है और पता चला आपके घर में आग लग गई है, तो आप उसमें बिजनेस करेंगे या घर जाएंगे, घर जाएंगे आप आग बुझाने के लिए, है ना, क्योंकि वहां पर उस समय वो ज्यादा आवश्यक है। इसलिए ठाकुर भक्तिनाथ कह रहे हैं यहां राधा कृष्ण की तो अष्टकाली लीला चल ही रही है वृंदावन में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन वहां दिक्कत है, वहां राधारानी असहाय अवस्था में खड़ी है, वहां पर आवश्यकता है और इस समय मुझे मौका मिल जाएगा सेवा का, यह उत्तम मौका है, मुझे अभी कुरुक्षेत्र जाना चाहिए, ब्रह्म सरोवर के निकट जाना चाहिए, वहां भजन कुटीर बनाऊंगा। तो आचार्यों की बातें तो आचार्य लोग ही समझ सकते हैं, है ना, हम लोग कैसे। इसलिए हमारे कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, वैश्वेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए, बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी वैष्णव की क्रिया मुद्रा को नहीं समझ सकता है, एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म में वैष्णव को जज नहीं किया जाता। एक महाभागवत को समझने के लिए महाभागवत बनना पड़ेगा आपको। कनिष्ठ भक्त कभी उत्तम वैष्णव को नहीं समझ सकता है, क्योंकि कनिष्ठ भक्त का मतलब ही है ना तद भक्तेशु न अन्यु ना तद भक्तेशु च अन्यु सप्राकृत स्वतः, भागवत में लिखा है। वो नहीं जानता है कि भक्त कौन है, वो नहीं जानता है कि अतिथि सत्कार कैसे होना चाहिए, वो नहीं जानता है कि शास्त्र क्या है, उसकी श्रद्धा बड़ी कोमल होती है, वो क्या जाने उत्तम वैश्य कौन है। प्राकृत भक्तों को तो वैश्य सेवा में लगाया जाता है और इस तरह से प्राकृत भक्तों को मध्यम अधिकारी के धरातल पर लाया जाता है, नहीं तो प्राकृत भक्त हमेशा प्राकृत भक्त रहेंगे। तो इस तरह से गदाधर, ये तो कुछ गदाधर तत्व की बात थी। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, गदाधर पंडित से जो उनसे जुड़ी हुई जो लीलाएं हैं उन पर भी थोड़ा विचार करना आवश्यक है। कवि कर्णापुर ने गदाधर पंडित के बारे में बताया, जैसे हमने पहले ही बताया और चेतन चरितामृत में जैसे बताया कि अंतरंगा शक्ति है, गदाधर पंडित को गदाई भी कहा गया है, जैसे निमाई और निताई बोलते हैं वैसे गदाई भी बोलते हैं गदाधर पंडित को। और गदाधर प्राणनाथ, गदाधर प्राणनाथ, तो गौरंग महाप्रभु को क्या कहा जाता है, गौरंग महाप्रभु का एक नाम क्या है, गदाधर प्राणनाथ, यानी कि गदाधर के प्राणनाथ है, जैसे राधानाथ बोलते हैं। राधानाथ सुना है ना आपने, सबने सुना होगा राधानाथ, इस तरह से गदाधर प्राणनाथ। तो गदाधर प्राणनाथ कौन है, महाप्रभु है गदाधर प्राणनाथ। तो गदाधर पंडित का जन्म जो है एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, वीरेंद्र नाम के ब्राह्मण परिवार में हुआ, वैशाख के महीने में जो अभी चल रहा है आज के दिन 1486। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि महाप्रभु और गदाधर पंडित की उम्र लगभग एक बराबर ही, 1486। उनके पिता का नाम था माधव मिश्र, माधव मिश्र। पहले हमने क्या किया, तत्व विचार किया, अब हम विचार कर रहे हैं लीला विचार। दो प्रकार के विचार होते हैं कथा के दौरान, भागवत जो पढ़ते हैं या कोई ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें एक विचार होता है तत्व का, फिलोसफिकल डिस्कशन, और साथ में फिर लीलाओं का विचार होता है। तो ये लीला विचार हम लोग कर रहे हैं। तो गदाधर पंडित इस प्रकार, उनका जन्म, उनकी माता का नाम था रत्नावती, 13 साल की उम्र में उनके पिता ने उनको नवदी भेज दिया, ताकि वहां पर वो अपने मामा के घर पर रहें और वहां पर नवद्वीप में रहकर वो अध्ययन कर सकें, क्योंकि नवद्वीप में उन दिनों क्योंकि वो विद्या का केंद्र था और बड़े बड़े वहां पर विद्वान लोग रहते थे और विद्या प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर आते थे, नवद्वीप में आया करते थे। तो गदाधर पंडित जो है महाप्रभु के बड़े नजदीक थे पाठशाला के दिनों में। और लेकिन महाप्रभु, जैसे हमने पहले बताया जब हम तत्व की चर्चा कर रहे थे, तो बड़े ही क्या कहते हैं उसको, शरारती थे। प्रारंभ में बड़े शरारती थे, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाते थे। ब्राह्मण लोग गायत्री करते थे तो गंगा जी के भीतर जाके उनके पांव खींच लेते थे। ब्राह्मण लोग शौच क्रिया के जा रहे होते थे, बाहर से दरवाजा बंद कर देते थे, खिड़कियां बंद कर देते थे, तो ब्राह्मणों का, विद्वानों का मजाक उड़ाते थे, उनकी बात को काटते थे, काटने के बाद उन्हीं की बात को सच साबित करते थे, सच साबित करने के बाद फिर से उनकी बातों को काटा करते थे, काटने के बाद फिर से उनकी बातों को सच साबित करते थे। ब्राह्मण लोग कंफ्यूज हो जाते थे, भाग जाते थे, परेशान हो जाते थे ब्राह्मण लोग, तो बहुत लोगों का मजाक उड़ाते थे। कन्याएं जारी होती थी गंगा जी की और पूजा करने के लिए, उनको जाके कहते मुझसे विवाह कर लो, वो आकर शची माता को कंप्लेंट करते कि इस तरह दिमाग ऐसा करता है, हमारे साथ मजाक करता है, ऐसा विचार वो करते हैं कि वो कंप्लेंट करेंगे करें, लेकिन बाद में आकर फिर वही निमाई की प्रशंसा करते हैं जिस तरह से गोपियां करती थी ब्रज में। तो इस प्रकार बहुत ही ज्यादा शरारती थे निमाई पंडित। तो गदाधर पंडित को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या इस तरह से मजाक करते हैं, और यहां तक कि वैष्णव लोग थे, गदाधर पंडित और मुकुंद ये और मुरारी गुप्त दूर से देखकर भाग जाते थे निमाई को देखते, क्योंकि आएगा समय खराब करेगा, भक्ति से संबंधित तो कोई बातें करेगा नहीं, तो बेकार बात करना है, अच्छा है कि यहां से चले जाए हम लोग। तो गदाधर पंडित दूर से भाग जाते थे, लेकिन जब महाप्रभु जब गया से वापस आए और उनकी दीक्षा श्रीपाद ईश्वरपुरी से हुई तो उनका पूरा जीवन बदल गया, वो भाव वेश में आ गए, नृत्य कीर्तन करने लगे। सबसे पहले गया में जब भगवान विष्णु के चरण देखे, चरण चिन्ह देखे थे, उस समय पहली बार भाव में नृत्य किया था महाप्रभु ने गया में, और तदुपरांत श्रीपाद ईश्वरपुरी से दीक्षा शिक्षा लेकर उनकी सेवा करके उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जाग गया। हमेशा भाव में रहते गदगद होकर, उनका कंठ गदगद हो जाता हरि नाम लेते हुए। वापस पहुंचे नवदीप, और जब नवदीप पहुंचे तो सबसे पहले वहां पर शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर पर पहुंचे, शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर पर पहुंचे, और उसके बाद सदाशिव के घर पर भी गए, मुकुंद के घर भी गए, अन्य वैष्णव के घर पर गए, और वहां पर निरंतर रोते रहे, कृष्णा कृष्णा, कि भाव की दशा में नहीं है तो कम से कम, है ना, ड्रामा में तो करते ही है ना नकल, हमारे कई भक्त लोग करते हैं, बड़ा अच्छा ड्रामा करते हैं, रोएंगे वास्तव में रो जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि वहां के भाव की दशा में आ रहे हैं। साईं जी लोग ऐसे ही करते हैं, साईं जी लोग बड़ी आसानी से आंसू आएंगे, आप आ जाएंगे, अगर आप बंबई में जाएंगे जो एक्टर्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनको रोने के लिए बोलिए एकदम रो देंगे, एकदम उसी समय रो देंगे, ये तो कला है। तो साहित्या प्रवृत्ति के जो अप संप्रदाय के लोग होते हैं उनके लिए रोना धोना और जमीन पर लौटना बहुत आसान काम होता है, लेकिन जो वास्तव में सिद्धांत को जानते हैं, जिन्होंने रूप गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़े हैं, वो समझ आते हैं ये भाव की दशा में नहीं, ये भावुक है, उसमें उक जुड़ा हुआ है भाव के साथ। तो महाप्रभु कहने लगे, कृष्ण कृष्ण, हा कृष्ण, कहां हो तुम, और ऐसे कहते कहते महाप्रभु मूर्छित हो गए। और जब उन्होंने, उनकी चेतना फिर से जागृत होती, तो जिनके हृदय पाषाण के बने होते, जिन लोगों के हृदय पाषाण के बने होते उनका हृदय भी पिघल जाता, और कई बार तो वो मुरारी के कंधे पर हाथ डालते, मुरारी मुरारी कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण कितने मधुर हैं, कितने मीठे हैं। कभी कभी वो सदाशिव को कहते, क्या कहते, हम दोनों मिलकर कृष्ण की पूजा करेंगे, हम दोनों मिलकर कृष्ण की पूजा करेंगे। और कभी कभी गदाधर को कहते हैं, गदाधर तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुमने कृष्ण की पूजा की है बचपन से, मैंने कृष्ण को ढूंढा लेकिन पता नहीं कहां कृष्ण चले गए, कहीं गुम हो गए कृष्ण, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपना दुख किसको प्रकट करूं। तो एक दिन महाप्रभु बहुत रो रहे थे, इस प्रकार क्रंदन कर रहे थे, तो एकदम से चिल्लाने लगे, हा पुंडरीक, हा पुंडरीक, तो इस तरह से बोलने लगे, पुंडरीक पुंडरीक करके चिल्लाने लगे कि आप मुझसे सहा नहीं जा रहा है, विरह नहीं सहा जा रहा है, कब मैं तुम्हारा दर्शन प्राप्त करूंगा, मुझे कब शांति मिलेगी। तो गदाधर और अन्य भक्त जो रोते रहे और रोते रोते उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि प्रभु कौन है वो सौभाग्यशाली भक्त जिनका आप इतना चिंतन कर रहे हैं, जिनके लिए आप इतना रो रहे हैं, कौन है वो सौभाग्यशाली भक्त। तो महाप्रभु ने कहा पुंडरीक विद्यानिधि उस भक्त का नाम है, छटक राम का वो भक्त है और उस जैसा भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं है। नवदीप आया हुआ है, मैं उसके दर्शन का अभिलाषी हूं, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं, कहां उसके दर्शन प्राप्त होंगे, कब मुझे उसके दर्शन प्राप्त होंगे, कहां तो जानते थे लेकिन कब दर्शन प्राप्त होंगे ये वो सोच रहे थे। तो तत्काल ही एक दिन जब पुंडरीक छटग्राम से नवदीप आए, गदाधर पंडित की बड़ी इच्छा हुई क्योंकि महाप्रभु ने उनकी बड़ी प्रशंसा की हुई थी। तो गदाधर पंडित मुकुंद को लेकर उनके पास है क्योंकि मुकुंद जो है उन्हीं के गांव के थे, छटग्राम के थे। तो ये दोनों गए उनके घर पे, वहां पर पुंडरीक विद्यानिधि बड़े राजवेश और रेशम के गद्दे में लेटे हुए थे और तकिया था उनके सिरहाने में और साथ में उनके लंबे लंबे बाल आमलकी तेल से सुसज्जित थे और चारों तरफ सुगंध आ रही थी, पान खा रहे थे वो, साथ में पीक दान था और वहां पे सेवक खड़े थे जो उनको पंखा कर रहे थे, बड़े ठाट बाट से लेटे हुए थे। और पुंडरीक विद्यानिधि ने इन अतिथियों का स्वागत किया बड़े मर्यादा से और उसके बाद मुकुंद को कहा कि ये कौन है साथ में आपके, गदाधर पंडित के लिए कहा। तो गदाधर पंडित की उम्र उस समय 22 साल की थी और चेहरे में इतना तेज उनकी कांति थी। तो विद्यानिधि निरंतर जो है पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर की ओर देखते रहे देखते रहे। और जैसे गदाधर पंडित ने देखा उनकी ओर तो बहुत ज्यादा वो दुखी हुए, भ्रमित हो गए। उन्होंने देखा कि ये किस तरह के वैष्णव हैं, इतने ठाट बाट से रह रहे, मैंने तो इनके बारे में बहुत कुछ सुना था, मैंने तो बहुत कुछ सुना था गौर सुंदर से इनके बारे में, लेकिन ये तो इतने ऐश्वर्य में रह रहे हैं, रेशम का गद्दा और ये पीकदान रखा हुआ है, पान खा रहा है ये, साथ में इस सेवक लगे पंखा कर रहे हैं, ये तो हो क्या रहा है, विरक्ति का कोई लक्षण ही नहीं नजर आ रहा। तो मुकुंद ने देखा जब गदाधर पंडित भ्रमित हो रहे हैं तो मुकुंद मुस्कुराने लगे, उनको हंसी आ गई और गदाधर पंडित को बताने के लिए कि वास्तव में पुंडरीक विद्यानिधि की वास्तविक स्थिति क्या है, उन्होंने श्रीमद् भागवतम से श्लोक उदित किया जो शायद मैत्री मुनि ने विदुर जी को बोला था, अहो बकी स्तन काल कूटम जिघाम से पायत अपि असाध्वी लेबे गतिम धात्री उचितम ततो नियम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। कि कृष्ण जैसा दयालु व्यक्ति कौन हो सकता है। सुखदेव गोस्वामी भी जब जंगल की ओर निकले थे तो वेद व्यास जी के शिष्यों ने दो श्लोक बोले थे जिसमें कृष्ण के एक रूप माधुर्य का वर्णन था और एक दूसरे श्लोक में जो आज जो श्लोक बता रहे हैं अभी जो श्लोक बता रहे हैं इसमें कृष्ण के गुणों का वर्णन था, उनकी करुणा का वर्णन है। इसमें कृष्ण की दया देखिए कि पूतना आई थी स्तन प्रदान करा के कृष्ण को मारने के लिए आई थी, जहर देके मारने के लिए आई थी, स्तन पान करा के जहर देना चाहती थी पूतना, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, दया दिखा के पूतना को धात्री का स्थान दे दिया गोलोक वृंदावन में, यानी कि माता का स्थान दे दिया, धात्री मतलब नर्स, वात्सल्य प्रेम प्रदान किया पूतना को। उस पूतना का सौभाग्य तो देखिए, कृष्ण की दया तो देखिए। जब पुंडरीक विद्यानिधि ने श्लोक सुना जो मुकुंद ने उच्चारण किया तो पुंडरीक विद्यानिधि अपने आप को संभाल नहीं पाए, क्रंदन करने लगे, भाववेश में आ गए, जमीन पे लौटने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनको संभालने के लिए चार पांच लोग वहां पे एकत्रित हुए, किसी ने उनके हाथ को पकड़ा, उनके कमर को पकड़ा, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तत्काल ही उसके बाद वो मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए। और बताया जाता चैतन्य भागवत में लगातार 9 घंटे मूर्छित रहे। चैतन्य भागवत मध्यखंड 7वें अध्याय में इसका वर्णन आता है कि मूर्छित हो गए, लगातार 9 घंटे मूर्छित रहे पुंडरीक विद्यानिधि, 9 घंटे मूर्छित रहे। और इस प्रकार गदाधर पंडित को बड़ा पश्चाताप हो रहा था, उन्होंने कहा मुझसे अपराध हो गया, मैं पहचान नहीं पाया पुंडरीक विद्यानंद जी को, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ। और इस प्रकार पुंडरीक विद्यानंद जी ने देखा ये गदाधर पंडित ने इस प्रकार क्या उन्होंने प्रस्ताव रखा है। गदाधर पंडित ने विचार किया कि अगर मैं इस अपराध से बचना चाहता हूं तो मुझे एक ही उपाय है मेरे लिए कि मुझे पुंडरीक विद्यानंद जी से दीक्षा लेनी होगी, यही मेरे गुरु हैं। तो इस प्रकार गदाधर पंडित ने मुकुंद के समक्ष ये बात रखी और पुंडरीक विद्यानंद जी बड़े प्रसन्न हुए। और पुंडरीक विद्यानंद ने कहा कि निश्चित रूप से मेरे पूर्व जन्म का कोई अच्छा पुण्य फल है जिसके कारण मुझे गदाधर पंडित जैसा शिष्य प्राप्त हो रहा है, ये कृष्ण के हित की कृपा है। तो शुक्ल द्वादशी के दिन पुंडरीक विद्यानंद जी ने गदाधर पंडित को दीक्षा दी। तो इस प्रकार गदाधर पंडित की दीक्षा हुई। एक दिन की बात है, महाप्रभु को बड़ा विरह महसूस हो रहा था। देखिए चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है वो ऐसा ही है ना, भाव वेश में आना, क्रंदन करना, रोना, जमीन पे लौटना और उसके बाद मूर्छित हो जाना, फिर संकीर्तन करना फिर से, है ना, फिर भक्त लोग एक साथ मिलकर प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, बस यही है, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, है ना। तो गदाधर पंडित को महाप्रभु कहते हैं, गदाधर मुझे बताओ कि कृष्ण कहां चले गए मुझे दर्शन देकर, कहां गए वो, मैं एक क्षण भी उनके बिगैर नहीं रह सकता हूं। वो गदाधर पंडित ने सांत्वना देने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि प्रभु कृपा करके आप चंचल मत लो, आप जानते नहीं कि कृष्ण साक्षात आपके हृदय में विराजमान है, आपके हृदय में निवास करते हैं, आप जानते नहीं है कि कृष्ण आपके हृदय में बैठे हैं। तो जैसे ही महाप्रभु ने देख सुना कि उनके हृदय में कृष्ण बैठे हैं, उन्होंने भगवान नरसिंह के द्वारा, जब भगवान नरसिंह की तरह उन्होंने क्या किया, अपना जो हाथी छाती जो है उन्होंने फाड़ना शुरू कर दिया। महाप्रभु ने अपनी छाती फाड़ना शुरू किया, उनकी छाती से खून रक्त बहने लगा। तो गदाधर पंडित ने महाप्रभु को बड़े कस के पकड़ लिया उनके हाथ को, उनका धैर्य रखिए प्रभु, कृष्ण जल्दी आने वाले हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से गदाधर पंडित ने महाप्रभु को सांत्वना दी। एक दिन महाप्रभु जो है ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और निरंतर आलिंगन कर रहे थे, ठाकुर जी का अर्चन वगैरह का आलिंगन कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, अश्रुधारा बह रही थी, उनके कपड़े भीग गए, कपड़े भीगते जा रहे थे क्योंकि कपड़े बार बार भीग रहे थे, तो अर्चन वगैरह की सेवा नहीं हो रही थी क्योंकि आप अगर ड्यूटी वर्षीय बाप रोते हुए नहीं कर सकते, आप तो जानते हैं ना ये वैदिक भक्ति में आता है, 32 सेवा अपराध में आता है कि आप रोते हुए चिल्लाते हुए आरती नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। इसी कारण से शायद रूप गोस्वामी ने इसको डाल दिया सेवा अपराध की लिस्ट में, क्योंकि कई ऐसे अपसंप्रदाय के जो साहिजिया प्रवृत्ति के लोग थे वो रोते अश्रुधारा बहाते, तो उन्होंने कहा नहीं डाल दिया कि रोना धोना नहीं है डीडीएस के सामने। तो इस कारण से भी कई बार नियम लागू किए जाते हैं परिस्थितियों को देखकर। लेकिन महाप्रभु के जो अश्रुधारा थे ये प्रेमाश्रु थे, ये प्रेमाश्रु थे, तो महाप्रभु रो रहे हैं, उनका कपड़ा भीग रहा है, वो डीटी वर्शिप नहीं कर पा रहे हैं, अर्चन वगैरह की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही है। उन्होंने अपने पत्नी को बुलाया, विश्वप्रिया को, वस्त्र मांगे, वस्त्र बदले, उन्होंने वस्त्र बदलते फिर से अश्रुधारा बहती, फिर से कपड़े उनके भीग जाते, फिर से वस्त्र मंगवाते, फिर से कपड़े भीग जाते, फिर से वस्त्र मंगवाते। उन्होंने कहा बहुत हो गया, उन्होंने कहा गदाधर अब तुम ही इनकी सेवा करना, मुझसे सेवा नहीं होती इनकी, ये बार बार कपड़े भीगते रहते हैं मेरे प्रेमाश्रु से। जो शशि माता ने कहा गदाधर पंडित को, जब उन्होंने देखा यह हाल देखा, गदाधर आज से तुम ठाकुर जी की सेवा करना और हमेशा निमाय के साथ रहना, कभी निमाय को मत छोड़ना, कभी वैसे भी नहीं छोड़ेंगे, आप तो पहले समझ गए ना, हमने बता दिया कि क्यों नहीं छोड़ेंगे, इसलिए लीलाओं के पीछे जब तक तत्व को ना समझा रहा है तो लीला भी नहीं समझ में आएगी, तो कोई सोचेगा ये कहानी चल रही है, कोई स्टोरी चल रही है, जितने भागवत में तो स्टोरी इसी तरह से दी है। तो इसलिए क्योंकि वो खाली है, हॉलो है अंदर, तो वैसे ही उनको छोड़ने वाले हैं। अब शशि माता की आज्ञा प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से उनको छोड़ेंगे नहीं, जीवन के अंतकाल तक नहीं छोड़ने वाले वो तो। और इस समय महाप्रभु जब उन्होंने देखा कि गदाधर पंडित ने सेवा स्वीकार कर ली है, तो महाप्रभु फिर से नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे और फिर शिवास पंडित के घर पे गए। तो गदाधर पंडित दिन रात चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते, शिवास पंडित के घर भी जब जाते तो वहां भी गदाधर पंडित जाते उनके साथ, और नित्य कीर्तन करने के बाद जब महापुरुष थक जाते, थके हारे होते, तो उनको पंखा करते, उनको चामार दिखाते, उनको पंखा करते, उनको मसाज करते, उनका मसाज करते, उनके उनके उनकी चरण सेवा करते और नाना प्रकार की उनकी सेवा करते, उनका स्नान कराते, उनको प्रसाद खिलाते, और यहां तक कि रात में जब वो सोते तो उनकी चरण सेवा करते उस समय भी। तो महापुरुष की सेवा गदाधर पंडित कई तरीके से करते हैं, कई तरीके से करते हैं, लेकिन किस भाव में? दक्षिण भाव में, नम्रता के भाव से, सब में से मूड में। तो महाप्रभु कई बार भाव की दशा के कारण, कई बार तो राधा भाव में होते चैतन्य महाप्रभु, कई बार कृष्ण के भाव में होते। महाप्रभु तो महाप्रभु है, ये महाप्रभु को समझना कोई इतना आसान थोड़ा है। कभी वो राधाणी का भाव प्रकट करते, कभी कृष्ण का भाव प्रकट करते, क्योंकि दोनों ही है। अंतः कृष्ण बहिर्गौर, अंतः कृष्ण बहिर्गौर, तो बाहर से गौर है, अंदर से तो कृष्ण, भीतर से तो कृष्ण ही है। और राधाणी के भाव में आते तो गदाधर पंडित को सखी समझकर कहते कि हे सखी, मुझे अभी भी कृष्ण से संदेश प्राप्त हुआ है, वो आने वाले हैं, तुम जल्दी जल्दी क्या करो, माला बनाओ, फूल की माला बनाओ। और अगर कृष्ण के भाव में होते तो नर्तक के रूप में प्रस्तुत करते अपने आप को गदाधर पंडित के समक्ष, और गदाधर पंडित को, गदाधर पंडित के कंधे पर हाथ रखते, जैसे कि राधाणी के कंधे पर हाथ रख लिया हो। आपने एक पेंटिंग देखी है ना, तो राधाणी के कंधे पर हाथ रख लेते। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार का संबंध होता और गदाधर पंडित नियमित रूप से उनकी सेवा करते। एक बार की बात है, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश प्रकट कर रहे थे और सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे थे शिवास पंडित के घर पे। ये तो आप जानते ही हैं, शत प्रहर लीला, जिसको शत प्रहर लीला कहते हैं, लीला कहते हैं, 21 घंटे की लीला हुई निरंतर, लगातार जो लीला हुई 21 घंटे के लिए महाप्रकाश लीला की शिवास पंडित के घर पे। महाप्रभु ने वहां पर महाभाव प्रकट किया, महाप्रकाश प्रकट किया, महाप्रकाश प्रकट किया और सभी भक्तों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो एक दिन की बात है, जब महाप्रभु शिवास पंडित के घर से आ रहे थे संकीर्तन करके और गदाधर पंडित पंखा कर रहे थे, तो गदाधर पंडित उनके महापुरुष के चरणों में गिर गए और रोने लगे। गदाधर पंडित ने उत्तर दिया, प्रभु आपने तो कृष्ण प्रेम सबको दिया है, मुझे क्यों वंचित कर दिया कृष्ण प्रेम से, मुझे क्यों नहीं दिया कृष्ण प्रेम, और मैं क्या इतना दुर्भाग्यशाली हूं। तो महाप्रभु एकदम से भाव में आ गए। महाप्रभु ने, गदाधर ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, कल सुबह जब तुम गंगा जी जाओगे स्नान करने के लिए, जैसे ही तुम गंगा जी में स्नान करोगे, तत्काल ही तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। और इस तरह से कृष्ण प्रेम के सागर में तुम गोते खाओगे, गोते खाओगे। ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो है बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है, अनमोल ग्रंथ है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया है कि नवद्वीप में बाढ़ आती है, गंगा जी का पानी जल जो है यहां तक हमारे मंदिर में प्रवेश कर जाता है, आप जानते हैं ना, नरसिंह भगवान को भी डुबो देता है। तो ये कृष्ण प्रेम की बाढ़ है। ऐसे में मान लीजिए आपके हाथ में कोई ग्रंथ है, ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की महिमा बता रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके हाथ में ग्रंथ, आपके हाथ में ग्रंथ है, गीता है, श्रीमद् भागवत है, चैतन्य चरितामृत, और गंगा जी का पानी जो है वो ऊपर आ रहा है, आप खड़े हुए हैं, घुटने तक पहुंच गया है, कमर तक पहुंच गया है, आपको डर लग रहा है, अब हाथ में आपने पकड़े हुए ग्रंथ पकड़े हुए हैं और बस हाथ के निचले भाग तक पहुंच गया है गंगा जी का पानी, अब क्या करूं बताइए, क्या करूं ग्रंथों का? एक ग्रंथ कम कर दो, गीता को छोड़ दो। फिर पानी और ऊपर बढ़ने लगा, जब जल और ऊपर बढ़ने लगा, ठीक है भागवत को छोड़ दो, भागवत को छोड़ दो, चिंता मत करो, अब मेरे पास केवल चैतन्य चरितामृत में रह गया है और कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कंगाल हूं, मेरा घर भी डूब गया, मेरे परिवार के लोग भी डूब गए, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, केवल एक चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है मेरे पास। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि इस ग्रंथ को लेकर डूब जाओ, इस ग्रंथ को लेकर डूब जाओ, क्योंकि इसमें आप डूबोगे नहीं वास्तव में, इसमें अगर आप इस ग्रंथ को लेकर अगर आप डूब भी गए तो तैरने वाले हो, ये तो अमृत धारा है, ये भक्ति रसामृत सिंधु है, ये रसामृत का सागर है, तो इसमें अगर आपको तैरना भी नहीं आता तो हमेशा आप जीवित रहोगे। इस अमृत, इस सिंधु की अगर बिंदु भी मिल जाए आपको तो वही आपके लिए पर्याप्त है, वही आपको भव सागर से पार करा देगी। तो चेतन चरितामृत ग्रंथ बड़ा ही अनमोल ग्रंथ है। तो हम कहां पे थे? हाँ, तो कहते हैं कि महाप्रभु कहते हैं कि कल सुबह जब आप गंगा जी से स्नान करने आओगे उस समय निश्चित रूप से गदाधर तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल, ओ हरि बोल, हरि बोल। वो इस प्रकार महाप्रभु ने गदाधर पंडित को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। गदाधर पंडित महाप्रभु के घर वापस आए और महाप्रभु उस समय कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत थे। महाप्रभु कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत थे। तो उन्होंने कहा, गदाधर क्या तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई? गदाधर कुछ कह नहीं पाए, तुरंत ही महाप्रभु के चरणों में गिर गए और उनके चरणों को, महाप्रभु के चरणों को उन्होंने अपने अश्रुधारा से स्नान कराया। महाप्रभु का संन्यास और गदाधर पंडित ने भी संन्यास लिया। तो महाप्रभु की नवदीप लीला जो है वह अंत होने लगी और उन्होंने अपने पार्षदों को कहा, परिकरों को कहा जो उनके बड़े निकट थे, मैं अब संसार का परित्याग करने वाला हूं, संसार से वैराग लेने वाला हूं, अब मैं जाने वाला हूं वृंदावन। गदाधर को ऐसा लगा कि उनके ऊपर किसी ने वज्र का प्रहार कर दिया है, वज्र का प्रहार कर दिया है। अपने आप को येन केन उन्होंने अपने आप को संभाला। उन्होंने कहा कि प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, आप केश का परित्याग कर देंगे, आप कोपिन धारण करेंगे, आप सीखा धारण करेंगे, आप ऐसा करेंगे, आप दर दर भटकेंगे, भिक्षा मांगेंगे, आप क्या होगा माता शची का बताइए, और विष्णुप्रिया जी का क्या होगा, उनके बारे में कुछ सोचा आपने, और हम सब का क्या होगा, भक्तों का क्या होगा, आप ही तो हमारे जीवन प्राण हैं, आप इतने कठोर हृदय के कब से हो गए प्रभु? तो महाप्रभु ने कहा, गदाधर कृष्ण से विरह होने के कारण मेरा शरीर जो है जल के राख हो गया है, अब केवल राख रह गया है। तो घर में राख रखने का कोई फायदा है बताओ? क्या डायलॉग्स हैं देखिए इनके बीच में, है ना? विरह के कारण, विरह अग्नि के कारण जो है शरीर जल गया है, जल के राख हो गया है, और राख ही तो रह गया घर में, घर में कोई राख रखता है क्या? उसको भी तो गंगा जी में प्रभावित कर दिया जाता है, 80 कलश को वहां प्रभावित करते कि नहीं करते हैं, घर पे रखते हैं, तो उसको भी प्रभावित कर दिया, कर देना चाहिए, घर में रखने का क्या फायदा। तो इस तरह से गदाधर पंडित को लगा कि महाप्रभु ने तो यह दृढ़ निश्चय कर लिया है, और जब महाप्रभु ने निश्चय कर लिया है वो पूर्ण स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है, अगर वो कोई इच्छा कर ले तो कोई इनकी इच्छा को बदल नहीं सकता है, उनकी इच्छा को कोई बदल नहीं सकता है। इसे बताते हैं कि गुरु को और कृष्ण को कभी हमें नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम सोचेंगे गुरु को अपने शासन में लेके आएंगे, ये कभी संभव नहीं हो पाएगा, इस कारण से वो गुरु हैं। इसी तरह से कृष्ण भी ऐसे ही है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त सदा भावे तव सद भी, है ना? विश्वनाथ जी ठाकुर ने यही बोला है, गुरु के लिए क्या बोला, साक्षात हरि के समान है। तो साक्षात हरि जैसे ही गुण है कि कृष्ण कभी किसी के काबू में नहीं आते हैं, क्योंकि वो परम स्वतंत्र है। महापुरुष ने इच्छा प्रकट की संन्यास लेने की तो कोई उनको नहीं रोक पाया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। महापुरुष जब अपने परिकरों को छोड़ के जाना होता था, जब भी जगन्नाथपुरी से भी कोई कई परिकर उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन महापुरुष किसी को नहीं ले जाते, पीछे रहो सब लोग, कोई नहीं आएगा मेरे साथ। ये था महापुरुष का विराग। देखिए सारो भट्टाचार्य ने कितना अच्छा बताया, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकम पुरुषम पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धि यस्तम हम प्रपद्य। कृपा बुद्धि, कृपा के सागर है श्री कृष्ण चैतन्य नाम से प्रकट हुए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी। वैराग्य विद्या, वैराग्य विद्या सिखाने के लिए आए, अपनी भक्ति करके दिखा रहे हैं महाप्रभु, कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं, सन्यासी होते हुए भी दान कर रहे हैं, सन्यासी होते हुए भी प्रेम का प्रदान कर रहे हैं। महाप्रभु ने पूछा था रूप गोस्वामी से प्रयाग, तुमने बोला मैं महावदन्याय हूं, मैं तो भिखारी हूं, सन्यासी हूं, मैं कैसे दानी बन गया? तो रूप गोस्वामी ने कहा कि आप कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए, कृष्ण प्रेम प्रदायक थे, ये आपका दान है, आप तो सबसे बड़े दानी है, इससे बड़ा दान तो इससे पहले किसी ने किया नहीं, किसी भी अवतार ने नहीं किया, जिसका दान आप कर रहे हैं, इसलिए आप महावदन्याय हैं, आप साक्षात कृष्ण हैं, कृष्ण चैतन्य के नाम से जाने जाएंगे, कृष्ण चैतन्य के नाम से जाने जाते हैं। तो महाप्रभु ने कहा लेकिन मेरी कांति तो कृष्ण वर्ण की नहीं है, मैं तो गौर कांति का हूं, तुम कहते हो मैं कृष्ण हूं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं गौर दिश्वे न वहां, आपने राधा रानी की कांति स्वीकार की है, इस कारण से गौर कांति है, भीतर से तो कृष्ण है, भीतर दिखाओ आपको, आप अंदर से कृष्ण है, बाहर से गौर है। इसी तरह से नवदी मंडल है, नवदी मंडल बाहर से गौर है, भीतर जाएंगे तो ब्रज के द्वादश वन आपको प्राप्त होते हैं, द्वादश लीला जो ब्रज है, ब्रज की जो द्वादश वन है, ब्रज की जो लीला स्थलियां है, वो नवदीप मंडल के भीतर प्राप्त होती हैं। जिस तरह से गौर है उसी तरह से उनका नवदीप क्षेत्र है। तो इस प्रकार महाप्रभु नीलाचल की ओर चले गए संन्यास लेने के उपरांत, क्योंकि शची माता की प्रार्थना थी कबीरनाना जाकर वो जगन्नाथपुरी में रहे। और गदाधर पंडित कैसे रहते हैं, जैसे हमने बताया कि गदाधर पंडित को पीछे पीछे जाना ही है, तो नवदीप छोड़कर गदाधर पंडित भी महाप्रभु के पीछे पीछे चल पड़े और वहां जाकर चैतन्य महाप्रभु अनेकों लीलाएं की। और वहां पे एक चटक पर्वत, चटक पर्वत को देखकर महाप्रभु सोचा कि तो गिरिराज जी है, उनको वृंदावन का फिर से स्मरण हुआ और बड़ी तेजी से भागे गिरिराज जी की ओर, बहुत तेजी से भागे भाव दशा में, और भाव दशा में तेजी से भागकर उस चटक पर्वत के ऊपर चढ़े और महाप्रभु उस चटक पर्वत को खरोदने लगे, बहुत तेजी से खरोदने लगे। और जैसे जैसे वो खरोदने लगे अंदर से उनको गोपीनाथ जी का विग्रह प्राप्त हुआ, महाप्रभु को गोपीनाथ जी का विग्रह प्राप्त हुआ जो श्याम वर्ण के थे, और इस तरह से गोपीनाथ जी का विग्रह स्थापित हुआ। राधारानी का विग्रह भी वहां पर श्याम वर्ण का है, ललिता जी का विग्रह भी श्याम वर्ण का है, काले हैं सारे, काले हैं सारे, कृष्णमय हैं। और राधारानी क्या है, कृष्णमयी है, कृष्णमयी राधारानी के नाम क्या है, कृष्णमयी। तो जब आप भी कृष्णमयी हो जाएंगे तो काले हो जाएंगे नहीं, कृष्ण कांति, कृष्ण जैसे काले, तो राधारानी काली है हो गई वहां पर। तो राधारानी का विग्रह है, ललिता जी का विग्रह है, कृष्ण वहां पे काले हैं, महाप्रभु ने गोपीनाथ जी का विग्रह वहां पर स्थापित किया और गदाधर पंडित को कहा कि आज से आप यहां पर इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करो। तो गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया था, क्षेत्र संन्यास का मतलब यह है कि उन्होंने ये फैसला किया, व्रत लिया, शपथ ली कि मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर, क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और ये गोपीनाथ जी की यहां पर सेवा करूंगा, महाप्रभु ने मुझे ये सेवा दी है। तो प्रत्येक दिन यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहां जाते, गदाधर पंडित के पास जाते, इस इलाके का नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ, टोटा मतलब बगीचा भी कहते हैं उसको। तो वहां जाकर प्रत्येक दिन गौरंग महाप्रभु गदाधर पंडित से रोज श्रीमद भागवत सुनते, प्रत्येक दिन भागवतम सुनते चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से। सोच के देखिए, गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधारानी अगर आपको भागवत सुनाए तो कैसा लगेगा, एक सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाया है ना, राधारानी के तो तोते हैं, उसे परीक्षित महाराज की क्या हालत हो गई। और अगर स्वयं श्रीमती राधारानी सुनाती है भागवत तो क्या होगा फिर, यानी कि महाप्रभु का प्रशिक्षण चल रहा था, नवदीप से शुरू हो चुका था, जगन्नाथपुरी में भी प्रशिक्षण चल रहा था। तो महाप्रभु प्रत्येक दिन जाते, कभी ध्रुव महाराज की कथा सुनते, प्रहलाद महाराज की कथा सुनते, कभी दशम स्कंद से कथा सुनते, तो गदाधर पंडित सब सुना रहे थे महाप्रभु को, और इस तरह से उनके भाव का पोषण हो रहा था। इससे और अधिक उनको विरह महसूस हो रहा था कृष्ण से, गंभीरा में विप्रलंब भाव प्रकट कर रहे थे महाप्रभु, महाप्रभु विप्रलंब भाव प्रकट कर रहे थे। तो इस प्रकार एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, कटक के पास एक स्थान है, उस स्थान का नाम है चित्रोत्पल, जो कि महानदी एक नदी है, उसकी एक शाखा है। तो उस नदी के तट पर पहुंचे महाप्रभु, अब नाव में चढ़ने वाले थे, तो गदाधर पंडित पीछे पीछे, जैसे मैंने बताया ना, गदाधर पंडित फिर से पीछे पीछे आ रहे थे। उन्होंने कहा मैं भी चलूंगा आपके साथ। उन्होंने कहा नहीं, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है और जिम्मेदारी ली है, गोपीनाथ जी की सेवा करोगे तुम, क्या तुम संन्यास छोड़ना चाहते हो, गोपीनाथ जी की सेवा छोड़ना चाहते हो, क्या ये तुम नहीं जानते कि धर्म के विरुद्ध होगा, और इस तरह से मुझे भी अपराध लगेगा। और वास्तव में तुम मेरे अगर शुभ चिंतक हो, मेरे शुभ चिंतक हो, तो वापस जाओ नीलाचल। गदाधर कुछ कह नहीं पाया। गदाधर पंडित रोने लगे और कुछ समय के बाद सर झुका के वो कहने लगे कि मैं कोई आपके लिए अपराध का कारण नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं सची माता को देखने के लिए। मैं नहीं जा रहा आपके साथ, आपके सूत्र में आपके साथ जा रहा हूं। मैं तो सची माता से मिलने जा रहा हूं, नवदीप जा रहा हूं, वहां पे सची माता से मिलूंगा। तो महाप्रभु ने फिर गदाधर पंडित के हाथ पकड़े और आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। महाप्रभु ने गदाधर पंडित को कहा, देखो गदाधर, तुमने हमेशा अपने सुख का परित्याग किया है मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए तुमने अपनी खुशी को त्यागा है, और आज तुम अपनी खुशी के लिए मुझे दुखी करोगे। तुम्हें ठीक लगता है ये कौन सी सेवा है? कई बार ऐसा भक्त लोग करते हैं ना, अपनी खुशी के लिए, अपने मन की खुशी के लिए गुरु को दुखी कर देते हैं, ठाकुर जी को दुखी कर देते हैं। आ मंदिर में रहो अकेले, हम जा रहे हैं वृंदावन, जन्माष्टमी हम वृंदावन में बिताएंगे। तो राधा पार सारथी राधिका रमन अकेले बनाएंगे जन्माष्टमी, क्योंकि भक्त लोग वृंदावन में बिजी है। तो इस तरह से अपने इष्ट को, अपने स्वामी को दुखी कर अगर खुद बड़े सुखी हो रहे हैं तो ये कोई वास्तविक सुख नहीं है, ये तो बहुत बड़ा दुख है, ये बहुत बड़े दुख का कारण होना चाहिए। वापस जाओ नीलाचल, वापस जाओ गदाधर। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं, अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझसे अलग ना हो जाओ या मैं तुमसे अलग ना हो जाऊं, तो कृपा करके वापस जाओ। तो गदाधर पंडित ने जब ये सुना कि महाप्रभु उनसे अलग भी हो सकते हैं, तो गदाधर पंडित स्तब्ध हो गए और स्तब्ध होकर वहां पर मूर्छित होकर गिर पड़े। सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर निकट में ही खड़े थे, तो महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा, ले जाओ इनको, इनको वापस ले जाइए, क्योंकि मुझे जाना आगे। तो महाप्रभु भी बहुत दुखी थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे गदाधर पंडित को, वास्तव में चाहते थे साथ में रहे, लेकिन विशेष कारणों से उन्होंने वो अपने साथ नहीं लेके गए, और उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तो एक बार की घटना है, नित्यानंद प्रभु एक विशेष प्रकार का चावल लेके आए थे गोपीनाथ जी के लिए बंगाल से, और गदाधर पंडित ने जब देखा कि चावल बहुत स्वादिष्ट और बहुत सुगंधित चावल है, तो उन्होंने बनाना शुरू किया। गदाधर पंडित तो बहुत अच्छा बनाते थे, भोजन बड़ा अच्छा बनाते थे। क्यों बनाते थे अच्छा? क्योंकि राधा रानी है, राधा रानी चीफ कुक है, राधा रानी रोज आती है, प्रत्येक दिन आती है बरसाना से नंदगांव, आप जानते हैं रात्रि की तो लीला हो गई संपन्न, सब लोग अपने अपने घर चले गए, कृष्ण अपने घर चले गए नंदगांव में, पीछे के रास्ते से वापस आ गए और कृष्ण राधा रानी पहुंच गए यहां पर, या बरसाना चली गई। दो ही तो स्थान है, साल के कुछ भागों में राधारानी यावट में रहती हैं, कुछ महीने जो है बरसाने में बिताती हैं। तो वो चले गए वापस अपने ससुराल चले गए, या बरसाना चले गए, जैसे भी है। तो वहां से प्रत्येक दिन राधारानी सुबह आती है नंदगांव, और माता यशोदा और रोहिणी के साथ वो क्या करती हैं, कृष्ण के लिए सुंदर नाना प्रकार के पकवान बनाती हैं, बहुत सारे व्यंजन बनाती। भक्ति ठाकुर ये भोग आरती में इन व्यंजनों का वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार गदाधर पंडित, तो राधारानी जो बनाती है कुछ, राधारानी कुछ पकवान बनाती है, तो दूसरी बार वो पकवान दोबारा नहीं बनता, ये उनकी विशेषता है। ऐसा है कोई कुक? ऐसा कुक है कोई इस संसार में, सृष्टि में कहीं नहीं मिलेगा, केवल एक ही कुक है ऐसी, वो राधारानी है। हर बार नया आइटम कृष्ण के लिए बताइए, हर बार कोई नया पकवान कृष्ण के लिए बना रहे हैं। इतनी वैरायटी शायद हमें सोच भी नहीं होगी, कल्पना भी नहीं की होगी। नाना प्रकार के व्यंजन अर्पित हो रहे हैं ठाकुर जी की सेवा में। भक्तों ठाकुर ने तो बहुत संक्षिप्त रूप में व्यंजनों का वर्णन किया, क्योंकि समय कम है हमारे पास, साधक के लिए समय कम होता है। साध्य की अवस्था में आप देख पाएंगे ये नाना प्रकार के व्यंजन, जब आप सब लीलाओं में प्रवेश करेंगे, नंदगांव पहुंचेंगे, बरसाना पहुंचेंगे, देखेंगे वहां पर, और फिर आप सबको भी वो महा महा महाप्रसाद मिलेगा। सब उनके अपने नित्य परिकर ले लेंगे, तो हम सबको भी उच्चिष्ट महा महा महाप्रसाद मिलेगा। तो गदाधर पंडित प्रत्येक दिन गदाधर पंडित इस प्रकार प्रसाद बनाते, और यहां पर तो गोपीनाथ जी की सेवा के लिए नित्यानंद प्रभु लेके आए थे, विशेष प्रकार का चावल लेके आए थे बंगाल से। तो उन्हें सबसे पहले शाक बनाया, जो टोटा में के बगीचे के पत्ते थे उससे बनाया, और साथ में इमली की चटनी भी बनाई, इमली की चटनी, और इस प्रकार बहुत सुंदर व्यंजन बनाया। और नित्यानंद प्रभु उस प्रसाद को ग्रहण करते, तो एक बार जब भोग लगा रहे थे गोपीनाथ जी को, तो भोग लगाते वक्त उस समय तत्काल ही वहां महाप्रभु पहुंच गए। तो महाप्रभु वहां जब पहुंचे तो महाप्रभु ने गदाधर पंडित को कहा, गदाधर तुमने मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया तुमने, क्या तुम दोनों मुझसे अलग हो, अकेले अकेले प्रसाद दे रहे हो, मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया, कितनी गलत बात है, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो तुम दोनों से मैं छीन लूंगा, छीन खा लूंगा, बोलो खिला दो कि नहीं खिला दो मुझे। तो गोपीनाथ जी ने जो खाया है भोग वो कृपा करके मुझे भी दो, मैं भी प्रसाद लेना चाहता हूं। तो गदाधर जो है बहुत प्रसन्न हुए, महाप्रभु ने बड़ी अयुत की कृपा की, गदाधर पंडित के ऊपर प्रसाद स्वीकार करने के लिए आए हैं, और नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु को दोनों को बिठाकर गोपीनाथ जी का जो महाप्रसाद है उन्होंने महाप्रसाद महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को खिलाया। और जब महाप्रभु उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने प्रसाद की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि इससे जो गंध निकल रहा है, प्रसाद से गंध निकल रहा है, ये गंध ही कृष्ण भक्ति प्रदान करने में सक्षम है। मतलब कहने का मतलब है जो इस प्रकार प्रसाद के अगर सुगंध को अगर ले भी लेगा और गंध को स्वीकार कर लेगा, उस सुगंध से ही जो है वो कृष्ण भक्ति उसके हृदय में प्रवेश कर जाएगी। ये महाप्रसाद की महिमा है ना, ऑल्टर से निकलने के बाद, यानी कि ऑल्टर से ऑल्टर में जाने से पहले ही हम लोग हम स्मेल करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या बनाया है, फूड क्रीम है, वाह रसगुल्ला है, आ तो बहुत बड़े फीस्ट होगा, उसको सेवा प्रात कहते हैं, वो सेवा प्रात है। भोग लग जाने के बाद आप खूब खुशबू लीजिए, आप खूब खुशबू लीजिए, और खुशबू आप लेंगे प्रसाद लेने की भी आवश्यकता नहीं है, कृष्ण भक्ति पहले ही प्रवेश कर चुकी होगी। तो सूंघना भी जो है भक्ति का एक अंग है, सूंघिए। तो अब यहां पर आगे बढ़ना आता है, 1534 में महाप्रभु प्रकट हुए, गदाधर पंडित उनको ऐसा लगा कि उनका जो है उनका प्राण चला गया, बिल्कुल अचेत अवस्था में खड़े हुए थे, और धीरे धीरे भागवतम पढ़ना भी उनका बंद हो गया था। बार बार प्रयास करते कि भागवत पढ़ो भागवत पढ़ो, भागवत नहीं पढ़ पा रहे थे, और जैसे ही वो भागवत खोलते तो महाप्रभु का स्मरण होता और भागवत को एक जगह रखकर रोने लगते, और कभी रोते रोते जोर जोर से चिल्लाते, गौर 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 गौर, कभी कभी तो गौर गौर भी नहीं बोल पाते, गो गो ही करते, गो गो कहते, उसी में जो है चुप हो जाते और मूर्छित हो जाते, गिर पड़ते, और कई घंटों तक मूर्छित रहते, ना खाते ना सोते। लेकिन वो इंतजार कर रहे थे श्रीनिवास आचार्य के लिए, इस कारण से उन्होंने अभी तक देह का परित्याग नहीं किया, देह का परित्याग नहीं किया। श्रीनिवास आचार्य 1518 में उनका जन्म हुआ था। श्रीनिवास आचार्य को महाप्रभु का आवेश अवतार बताया जाता है, देखने में बिल्कुल महाप्रभु की तरह लगते थे, लंबे लंबे हाथ, लंबा कद। तो इस प्रकार वो बहुत रो रहे थे। गदाधर पंडित की काफी उम्र हो गई थी, ज्यादा उम्र नहीं हुई थी, 48 साल के, ऐसा लग रहा था कि वृद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं। लेकिन वृद्ध किस कारण से थे? वो कृष्ण प्रेम के कारण वृद्ध हो गए थे, विरह के कारण, गौरंग महापुरुष से विरह के कारण वो वृद्ध अवस्था में थे। अब उनका हाथ गोपीनाथ जी के कंधे तक नहीं जा रहा था, इसलिए वो माला नहीं पहना पा रहे थे गोपीनाथ जी को, वो रो रहे थे। गोपीनाथ जी की भी देखिए सेवा नहीं हो पा रही, गोपीनाथ जी की सेवा मैं कैसे करूं? गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधारानी है। गोपीनाथ जी कौन है? कृष्ण है। राधारानी सेवा करना चाहे तो कृष्ण मना करेंगे क्या? कृष्ण खड़े ही रहेंगे क्या? इसलिए कृष्ण जो है गोपीनाथ गदाधर पंडित के समक्ष बैठ गए। गोपीनाथ जी का विग्रह बैठ गया तो ये एक विग्रह है पूरे विश्व में जो बैठा हुआ है, गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं। कुछ गदाधर पंडित जैसे देखा कि गोपीनाथ जी बैठ गए हैं, बड़ी आसानी से उन्हें गदाधर पंडित ने गोपीनाथ जी को माला पहनाया। तो सेपरेशन के कारण जो है गदाधर पंडित जो है वृद्ध हो रहे थे, श्रीनिवास आचार्य के लिए इंतजार कर रहे थे। श्रीनिवास आचार्य गौड़ देश से आए थे महाप्रभु से मिलने के लिए, लेकिन जब रास्ते में जब पहुंच रहे थे जगन्नाथपुरी, तो उनको पता चला कि महाप्रभु तो अप्रकट हो चुके हैं। शिवनाथ आचार्य को बहुत ही धक्का लगा और ऐसा उनको लग रहा था कि अब तो रहना बेकार है, मुझे तो विरह अग्नि में अब ये शरीर का परित्याग कर देना चाहिए, मुझे देह का परित्याग कर देना चाहिए। तो सपने में महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए, महाप्रभु ने दर्शन में बताया, उनका आलिंगन किया, उनके आंसुओं को पोंछते कहा कि देखो श्रीनिवास, ये शरीर त्यागने का विचार छोड़ दो, अभी तुम्हारे माध्यम से मुझे बहुत सारे कार्य कराने हैं, आप गदाधर पंडित से मिलो और वहां पर और अन्य परिकर हैं उनसे मिलो। तो श्रीनिवास आचार्य को जब महाप्रभु के दर्शन प्राप्त हुआ तो उनका साहस बढ़ा और जगन्नाथपुरी गए और वहां गदाधर पंडित से मिले और गदाधर पंडित से उन्होंने प्रार्थना की। गदाधर पंडित उस समय जब वो मिले, श्रीनिवास आचार्य जब मिलने गए थे तो गदाधर पंडित उस समय मूर्छित अवस्था में थे, तो गदाधर पंडित को जगाने के लिए श्रीनिवास आचार्य ने बोला जय गौर जय गौर। तो इस तरह से जब उच्चारण किया गौरंग महाप्रभु के नामों का तो गदाधर पंडित अचानक जाग गए कि कौन है ये महाप्रभु का नाम ले रहा है, कौन गौर गौर कर रहा है। तो गदाधर पंडित ने देखा श्रीनिवास आचार्य को, बहुत खुशी हुई उनको कि मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था, तुम्हारे लिए तो मैं जी रहा था, बहुत दिन के बाद आए, मुझे तुम्हारे बारे में सूचना प्राप्त हुई थी मुझे भी सपने में कि तुम आने वाले हो। श्रीनिवास के मिलने पर गदाधर पंडित अब निश्चिंत हुए और फिर गौर लीला का चर्चा गौर लीला की चर्चा करने लगे। तो एक दिन श्रीनिवास पंडित श्रीनिवास आचार्य ने गदाधर पंडित से प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि कृपा करके मुझे आप श्रीमद् भागवतम सिखाइए। तो गदाधर पंडित ने कहा यह संभव नहीं होगा मेरे लिए कि मैं भागवत सिखा सकूं, एक तो ये भागवत की जो पांडुलिपि है इसके अक्षर जो है सारे मिट गए महापुरुष के असुरों से, क्योंकि जब भी भागवत का पाठ होता है और महापुरुष अश्रु धारा बहाते अश्रु बहाते तो ये भागवत के अक्षर मिट जाते, तो अब मैं भागवत का पाठ तुम्हारे समक्ष नहीं कर सकता हूं, मेरा सुझाव यह है कि तुम वृंदावन जाओ और महाप्रभु ने तुम्हारे माध्यम से बहुत सारी इच्छाएं जो है पूरी करनी है, आप वृंदावन जाओ गौर देश से गुजरते हुए और वहां पर जाकर आप श्री जीव गोस्वामी के पास रहकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो। तो गदाधर पंडित का आदेश मिला श्रीनिवास आचार्य को, गदाधर पंडित का आदेश पाकर श्रीनिवास आचार्य वहां से निकले और बाद में वृंदावन पहुंचे और कुछ समय के बाद ही बहुत जल्द ही गदाधर पंडित भी अप्रकट हुए और गदाधर पंडित भी गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रवेश किए। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रवेश किए उसी तरह से गदाधर पंडित भी गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रवेश किए, आश्रय और विषय एक हो गए। आश्रय और विषय जब एक हो जाते हैं वो है चैतन्य महाप्रभु। आश्रय और विषय का जब मिलाप होता है, विषय कौन है, कृष्ण है, आश्रय कौन है, राधा रानी है, इन दोनों का जब मिलाप हो जाता है तो वो गौरंग महाप्रभु है। इसी तरह से विषय है गौरंग महाप्रभु, आश्रय है कौन, गदाधर पंडित। तो इस तरह से गौर गदाधर की इस प्रकार ये लीलाएं हैं। गदाधर पंडित का आज तिरुभाव दिवस है, वो आविर्भाव दिवस है और आविर्भाव तिरुभाव दोनों ही उनका अमावस्या के दिन हुआ, गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव गौर पूर्णिमा के दिन हुआ और दोनों ने ही एक ही विग्रह में प्रवेश किया, गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रवेश किया। हमारे परंपरा के अनुसार गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रवेश किया गौरंग महाप्रभु ने साथ में गदाधर पंडित ने, और इनसे ये कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं गदाधर पंडित से, किस प्रकार से भक्त को चाहिए कि वो नम्रता से, क्योंकि महाप्रभु की जो सेवा होती है वो सबसे पहले दास्य भाव में होती है। महाप्रभु की सेवा शुरू होती है सबसे पहले दास्य भाव में। तो इस तरह से महाप्रभु फिर जो है उस भक्त के ऊपर कृपा करते हैं और दास भाव में जो परिपक्व होता है तो महाप्रभु जो है फिर उसी भक्त को ब्रज की लीलाओं में प्रवेश कराते हैं। यह तरीका है ब्रज में प्रवेश करने का, ऐसा भक्तिवर ठाकुर ने लिखा है कि ब्रज में आप प्रवेश करना चाहते हैं तो महाप्रभु के माध्यम से ही आप ब्रज में प्रवेश कर सकते हैं। तो इतना कहकर हम यहीं पर विराम देंगे, काफी समय हो गया है, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ।
नहीं जीव यहाँ पर जो बताया है प्रभुपाद जो बता रहे हैं महाप्रभु के जो अंतरंग पार्षद हैं जो नित्य परिकर हैं शुद्ध भक्त जो शक्ति तत्व हैं, शक्ति तत्व का मतलब है जो चित्त शक्ति से प्रकट होते हैं, हम लोग हैं तटस्था शक्ति जी, और जो भगवान के जो नित्य परिकर होते हैं उनके चित्त शक्ति से स्वरूप शक्ति से प्रकट होते हैं, वो कभी माया के प्रभाव में आते नहीं ना कभी आ सकते हैं, वो तटस्था शक्ति नहीं है, वो उनके शक्ति तत्व से प्रकट हुए हैं। शक्ति सत्य जो परिकर हैं या तो बलराम जी से प्रकट होते हैं या फिर राधाणी से प्रकट होते हैं और वैकुंठ में महासंकर्षण से प्रकट होते हैं, नित्य परिकर इटरनल एसोसिएट्स। जितने अनंत कोटि अवतार हैं भगवान के विस्तार हैं, उतने अनंत कोटि जीव भी हैं जिनका विस्तार होता है, ऐसे कई परिकर हैं जिनका निवास गोलोक में भी है यानी कि वृंदावन में भी है, मायापुर में भी है और वैकुंठ में भी है। नित्य परिकर कई श्रीधाम सखा जैसे वहां पर है वृंदावन में है और वैकुंठ में वही श्रीधाम सखा गरुड़ जी है, नंद महाराज वहां पर है गोकुल में है, उसी तरह से वो नंद महाराज यहां पर नंद के रूप में द्वारपाल के रूप में भी प्रकट होते हैं वैकुंठ में। तो कई बार नित्य परिकर जो है वो वैकुंठ में भी होते हैं गोलोक में भी होते हैं। जितने भगवान के अनंत रूप हैं उसी तरह से भगवत कृपा से जीवात्माएं भी अनंत रूप ले सकता है। हाँ वो तो है, वो तो उनके स्वरूप है ना, हम आवेश की बात कर रहे थे। जैसे कई बार क्या होता है कि एक ही जीव में दो नित्य परिकरों का आवेश आ जाता है, जैसे वृंदावन दास ठाकुर उनमें व्यासदेव जी का है, व्यासदेव जी के अवतार है, साथ में कुसुमा पीड़ नाम के सखा है उनका भी आवेश वृंदावन दास ठाकुर। जैसे यहां पर गदाधर पंडित के बारे में बताया राधाणी और साथ में ललिता सखी, लेकिन राधाणी का जो है ज्यादा इसमें प्रोमिनेंस है। घंटी बज गई, क्लास समाप्त। हाँ हाँ जी, नित्यानंद वंशज में नहीं है, वंश अलग है परंपरा अलग है, वंश का मतलब है उनके संतान फिर उनके संतान फिर उनके संतान। हम तो पंच तत्व को स्वीकार कर रहे हैं ना एक साथ, हम केवल अलग से नित्यानंद प्रभु को नहीं गिन रहे, वी आर फॉलोइंग पंच तत्व। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दे हैव एस्टैब्लिश पंच तत्व, फाइव फीचर्स ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, और विशेष रूप से रूप गोस्वामी महाप्रभु के मनोभिष्ट को जानते हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो जो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी वो शिक्षा हम लोग स्वीकार कर रहे हैं।
आपने जैसे कहा कि व्यक्ति अलग 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 परंपरा में आता है,
परंपरा नहीं अलग अलग शाखाएं, हाँ अलग अलग परंपरा भी कह सकते हैं, लेकिन सारे गौड़िया हैं, ये सारे गौड़िया हैं लेकिन अलग अलग शाखाओं में बैठे, क्योंकि सब महाप्रभु के हैं साथ, नित्यानंद प्रभु भी महाप्रभु के साथ में, गदाधर पंडित भी महाप्रभु के साथ में, लेकिन महाप्रभु स्पेसिफिक जो इंस्ट्रक्शंस दिए रूप गोस्वामी को उन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस लाइन में।
और जिससे आपने कहा कि हर एक वंश की एक अलग 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 हर एक परंपरा की अलग पद्धति होती है,
हाँ
तो भाई जो नित्यानंद प्रभु की जो परंपरा है और जो अद्वैत आचार्य प्रभु की परंपरा है वो पद सेम है या डिफरेंट है?
सटल डिफरेंसेस हैं उसमें।
तो फिर अगर कोई जैसे अपना रूप रघुनाथ, तो रघुनाथ जी जो अद्वैत आचार्य जी के उसमें थे और रूप गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के उसमें थे, तो फिर दोनों को फॉलो करेंगे तो फिर कैसे होगा?
हम रघुनाथ दास गोस्वामी को फॉलो करते हैं रूप गोस्वामी के साथ, रूप मंजरी और रति मंजरी। अद्वैत आचार्य सदाशिव हैं, महाविष्णु भी हैं। अद्वैत आचार्य क्या करते हैं, वैदिक मार्ग से आपको भाव के भाव भक्ति की दशा में ले जाते हैं, अद्वैत आचार्य का ये योगदान होता है। लेकिन पंच तत्व की जब कृपा मिल जाए तो सारा आश्रय हम सभी का आश्रय ले रहे हैं हम तो, और विशेष रूप से महाप्रभु ने शिक्षा दी रूप गोस्वामी को, उन शिक्षाओं को आधार बनाते हुए हम साधना कर रहे हैं, ये हमारा पर्पस। क्योंकि रूप रघुनाथ दोनों की टीचिंग्स एक ही है, नो डिफरेंस। ठीक है, और कुछ? वो जब गया से वापस आए श्रीपाद ईश्वरपुरी से जब मिल के आए तब से शुरू हुआ। हाँ, आश्चर्य क्या, वो तो जानते थे सब कुछ, लेकिन लीला में तो आश्चर्य प्रकट हुआ उनको। ये तो ज्ञानी था, अब तो भक्त बन गया। वाम भाव था मान का भाव, मान प्रकट करती है राधा ने। वो इतनी आसानी से आपकी बात नहीं सुनेंगे, समय से पूर्ण नहीं है राधारानी का, समय से पूर्ण नहीं, अंदर से समय से है, बाहर से समय से पूर्ण नहीं। अंदर से तो बिल्कुल पिघली हुई होती है राधारानी, लेकिन बाहर से लगता है कि बिल्कुल कठोर है। कृष्ण बोल रहे हैं, नहीं नहीं मुझे अंदर प्रवेश आने दीजिए, आने दीजिए, नहीं नहीं नहीं, ये लेट आए, बाहर ही खड़े रहने दो। लेट क्यों आए रासलीला में, देर क्यों हो गई? राधारानी कई बार कृष्ण को बांध देती है लताओं से, है ना। फिर बताते हैं कि कोई उत्सव था, माता यशोदा कोई उत्सव मना रही थी, जन्माष्टमी का दिन था, अभिषेक हो रहा था, या बलराम जी का, हाँ बलराम जी का जन्मदिन था, इसलिए वहां पर उत्सव मनाया जा रहा था, इस वजह से मैं लेट हो गया। फिर वो फिर उसके राधारानी छोड़ देते हैं। तो मान जब प्रकट करती है तो फिर वो मान को भंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कृष्ण के लिए। ये बहुत काफी एसिटोरिक सब्जेक्ट्स हैं, हम लोग तो महामंत्र का जप कर ले ध्यान से, वही बहुत है, सोलह माला हो जाए। प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, एक परपोर्ट में लिख रहे हैं, समटाइम वी फाइंड डिवोटीज ऑफ अवर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट दे ट्राई टू रीड वेरी ऑस्टियर बुक्स बट दे आर अनएबल टू कंप्लीट 16 राउंड्स। प्रभुपाद लिख रहे हैं तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की बड़ी इच्छा होती है भक्तों को, प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन कई हमारे भक्त ऐसे हमारे आंदोलन में, लेकिन 16 माला पूरी नहीं कर पा रहे हो। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये विरोधाभास नहीं चलेगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। विराधर पंडित आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद।